भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धोर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भाविकों का स्वागत है हमारे दूसरे सत्र में श्रीमद् भागवत सप्ताह के। कल हमने श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ की और हमारी कल की चर्चा का विषय था भागवत का परिचय एवं श्रवण का महत्व। आज कौन है जो पहली बार आए हैं, हाथ उठाइए। तो आप लोगों के लिए हम केवल संक्षिप्त रूप में कल क्या हुआ ये बताएंगे। कल की चर्चा का विषय भागवत का परिचय एवं श्रवण का महत्व और उसमें हमारे चर्चा के विषय थे श्रीमद् भागवत कौन है, श्रीमद् भागवतम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, श्रीमद् भागवतम को किसने किससे कहा श्रोताओं के आठ प्रकार, श्रवण कैसे करना चाहिए और अंततः श्रवण करने के लाभ। तो जो कल आए थे सब याद है आपको? परीक्षा ली जाए? तो कल हमने हमारी कथा की बुनियाद रखी, कथा की नींव, और आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? आज का दूसरा दिवस भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूतना उद्धार। सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंध में विशेष रूप से जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनाना प्रारंभ करते हैं तो उनमें सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने जब असुरों का वध किया उनके जन्म के पश्चात, और ये सारे असुर किसने भेजे थे? कंस ने, जो कि डरा हुआ था, भयभीत था कि ये आठवां पुत्र देवकी का जो आकाशवाणी हुई है जिसके बारे में, वो कहीं उठकर मुझे मार न दे। अब देखिए कंस का भय व्यर्थ ही था कि यदि आकाशवाणी हुई है तो भाई ये आकाशवाणी हमारा ऑल इंडिया रेडियो की तरह तो नहीं है, वहां पर भी होती है ना आकाशवाणी, परंतु वैसी आकाशवाणी तो ये नहीं थी, ये देवताओं द्वारा प्रेरित, देवताओं द्वारा घोषित ये आकाशवाणी वो कभी गलत नहीं ठहरती। कंस ये जानता था, और यदि कंस के अंदर कोई संशय होता उस आकाशवाणी के प्रति तो कंस वसुदेव और देवकी को बंदी नहीं बनाता, देवकी और वसुदेव के छह पुत्रों को मारता नहीं। वो कंस जानता था कि उस आकाशवाणी में कुछ तथ्य है, वो व्यर्थ आकाशवाणी नहीं हुई। तो कंस वो भयभीत फिर भी प्रयास कर रहा है अपने शरीर की रक्षा करने हेतु, इतना प्रयास उसने किया। और हालांकि वसुदेव और देवकी को बंदी बनाकर छह पुत्रों को मारकर प्रतीक्षा में, कंस भी प्रतीक्षा में था भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, परंतु वो जन्माष्टमी मनाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं कि कंस सब इनविटेशन भेज रहा था मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी होने वाली है तो आप लोग सब आइए, मैं जो मामा, मेरी बहन का पुत्र कृष्ण वो पैदा होने वाला है तो कृष्ण के जन्म जन्माष्टमी पर सभी आइए, नहीं, वो तो विपरीत, कृष्ण की जन्माष्टमी के विपरीत वो भगवान श्री कृष्ण की हत्या करने हेतु प्रतीक्षा कर रहा था। तो ये दृष्टिकोण होता है एक असुर का, जो प्रतीक्षा करता है भगवान की, परंतु वो प्रतीक्षा करता है भगवान को हानि पहुंचाने के लिए। और जो भक्त होते हैं, भक्त प्रतीक्षा करते हैं भगवान की सेवा हेतु। कंस भी प्रतीक्षा कर रहा था, देवकी वसुदेव भी प्रतीक्षा कर रहा, परंतु दोनों में अंतर क्या है? अंतर है एक हत्या करने हेतु और एक सेवा करने हेतु। तो हमारे अंदर भी हमें झांक कर देखना है कि हमारे अंदर किसकी प्रवृत्ति प्रबल है। क्या हमारे अंदर कंस की प्रवृत्ति प्रबल है या देवकी वसुदेव की प्रवृत्ति प्रबल है, ये हमें झांक कर देखना है। तो कंस इतना भयभीत कि कृष्ण जन्म तो ले लिया, आकाशवाणी हुई है कृष्ण का जन्म तो होगा, अरे भाई जो सबको मुक्ति दिला रहे हैं, जिनका नाम केवल बद्ध जीवात्माओं को मुक्ति दिला देता है, केवल एक अक्षर उस नाम का, वो भगवान, उन्हें कौन मार सकता है। परंतु कंस उसे अपने आप पर, अपनी शक्ति पर ज्यादा विश्वास था, इसलिए कंस वो हार नहीं मान रहा था। हालांकि अपने अहंकार हेतु वो हार चुका था, परंतु वो सोच रहा था कि मैं दिखा दूंगा कि मैं कंस, मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं। तो कंस उसने अब घोषणा कर दी कि ये जो देवकी का आठवां पुत्र कहीं पर भी गया हो, मुझसे बचकर वो नहीं जा सकता। कहां जाएगा वो मुझसे बचकर, अरे अभी अभी पैदा हुआ है, कितने दिन का होगा, कितने महीनों का होगा, वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। तो ये खबर पूरे ब्रजमंडल में फैली हुई थी कि कंस उतारू है देवकी के आठवें पुत्र को मारने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी जब ये कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, पूतना वध की कथा, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी ने इसके पश्चात कंस द्वारा भेजे गए अन्य जितने भी राक्षस, उनका उद्धार भगवान ने जो किया, उन सब की लीला सुनाई परीक्षित महाराज को। परंतु उन सब लीलाओं में से ये जो पूतना वध या पूतना उद्धार की जो लीला है, ये सुखदेव गोस्वामी ने बहुत विस्तार से सुनाई, बहुत विस्तार। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, भाई भगवान ने तो इतने सारे असुरों का उद्धार किया, तो पूतना ही विशेष क्यों, क्यों पूतना के विषय में इतने विस्तार से कथा सुनाई गई। इसका कारण है, कारण यह है कि सुखदेव गोस्वामी वो जब प्रकट हुए थे तो वो एक ब्रह्मवादी थे, व्यासदेव जी के पुत्र, वो प्रकट हुए 16 वर्षीय, इतने वर्ष तक वो अपनी माता के गर्भ में रहे, क्योंकि वो इस माया के जंजाल में नहीं फंसना चाहते थे। तो सुखदेव गोस्वामी 16 वर्षीय जब जन्मे तो एक ब्रह्मवादी थे, वो शुद्ध भक्त के लक्षण नहीं प्रदर्शित कर रहे थे। हालांकि वो तो भगवान के पार्षद हैं गोलोक वृंदावन से, परंतु लीला हेतु सुखदेव गोस्वामी वो एक ब्रह्मवादी का अभिनय निभा रहे थे। तो पैदा होते ही सुखदेव गोस्वामी निकल पड़े, उन्होंने कोई अपना जन्मदिन नहीं मनाया, और 16वां जो जन्मदिन होता है वो बहुत विशेष होता है किसी व्यक्ति के जीवन में। परंतु सुखदेव गोस्वामी वो विरक्त ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो वन की ओर निकल पड़े, और व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे अपने पुत्र को पुकारते हुए व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे, परंतु सुखदेव गोस्वामी उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार इस स्तर का हो चुका था कि वो अब अपने पिता की वाणी भी नहीं सुन पा रहे थे। तब व्यासदेव जी इन्होंने सोचा कि एक ही तरीका है जिससे मैं अपने पुत्र को फिर वापस बुला सकता हूं। तो आप कल्पना कीजिए, व्यासदेव जी ने कौन सा तरीका अपनाया। व्यासदेव जी ने किसकी शरण ली अपने पुत्र को, सुखदेव गोस्वामी को फिर से बुलाने के लिए। श्रीमद् भागवतम की। और व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को भेजा वन में, जहां पर सुखदेव गोस्वामी अब निकल पड़े थे, जिस वन में व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को भेजा उस वन में, और वहां पर उन्होंने अपने शिष्यों को ये नहीं कहा कि जाकर पकड़ कर लेकर आओ, क्योंकि भौतिक स्तर पर कोई भी वस्तु सुखदेव गोस्वामी को पकड़कर वापस नहीं ला सकती थी। तो व्यासदेव जी जानते थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि जाकर उस सुखदेव के सामने वन में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करो, श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण करो, ताकि मेरा पुत्र सुखदेव इन श्लोकों को सुने और वो जो ब्रह्म साक्षात्कार किया हुआ है मेरा पुत्र, वो जब सुनेगा तब उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत होगा, जैसे कि कल हमने इसकी व्याख्या की कि भागवत का श्रवण करने से ज्ञान अर्जित होता है, ज्ञान अर्जित होने के पश्चात आकर्षण, आकर्षण के पश्चात अनुराग, अनुराग के पश्चात हम परीक्षा ले रहे हैं आपकी, उत्साह, उत्साह के पश्चात निष्ठा, निष्ठा के पश्चात कार्यान्वयन, तत्पश्चात आत्मसमर्पण। तो व्यासदेव जी ये सोचते हुए इस अभिप्राय से उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि जाकर श्रीमद् भागवत के श्लोकों का उच्चारण करो, सुखदेव गोस्वामी को सुनाई दे इस प्रकार। तो भाई श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में? 18,000। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700। तो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप कृपया अब ये भी बताइए कि कौन से श्लोक हम कहें, इतने सारे श्लोक हैं और प्रति श्लोक प्रति अक्षरे सभी भगवान कृष्ण के तुल्य हैं, तो कौन सा श्लोक, कौन से श्लोक हम उच्चारण करें? तो व्यासदेव जी अब अपने शिष्यों को बताते हैं कि कौन से श्लोकों का उच्चारण करना है, और कुछ श्लोक बताए उनमें से जो प्रमुख श्लोक, जिस श्लोक का श्रवण करने से सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए भगवान श्री कृष्ण की तरफ, वो श्लोक कौन सा था? अहो बकियम स्तनकालकूटम जिघांशया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ये श्लोक है पूतना उद्धार के संदर्भ में। व्यासदेव जी के शिष्यों ने पूतना के ऊपर जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई उस व्याख्यान को इस श्लोक के द्वारा सुखदेव गोस्वामी के करणों में उन्होंने कहा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो, अरे ये कैसा आश्चर्य है कि ये बकी, ये राक्षसी पूतना स्तन कालकूट, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर ये आई, और हेतु क्या था? नन्हे से, छोटे से, एकदम मृदु भगवान श्री कृष्ण, उन्हें मारने का हेतु। तो ये पूतना जो कि जिघाम सयापि हरये, भगवान श्री हरि उन भगवान को जो कि अब अपनी बाल लीला करने आए, उन भगवान को मारने हेतु जहां पर सब केवल अपना प्रेम बरसा रहे थे उन भगवान के ऊपर, ये पूतना प्रवेश कर रही है ब्रजमंडल में मारने हेतु उन भगवान को, और वो भी कैसे? कपट से। स्तनकालकूटम, अपने स्तनों का पान कराने के कपट से, विष का पान कराने, ये पूतना, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम शयायत अप्य साध्वी, एक साध्वी बनकर ये आई। परंतु इस श्लोक में कहा गया है, लेभे गतिम धातृ चितम ततोन्यम, किसकी गति क्या हुई? अरे भाई, जो भगवान को मारने निकला है उस व्यक्ति की गति क्या हो सकती है? क्या कल्पना हम करेंगे कि उस व्यक्ति की गति क्या होगी? साधारणतः हम तो कहेंगे भाई दुर्गति होगी और क्या होगी। नहीं, धात्री गति, सदगति, ये कहा गया है श्लोक कि भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना को अपनी धात्री, अपनी माता का पद, और वो भी कहां पर? इस भौम वृंदावन में नहीं जहां पर वो लीला करने आए, साक्षात गोलोक वृंदावन में, वहां पर इस विषैली कपटी पूतना को अपनी धात्री, अपनी माता का पद दिया। तब फिर इस श्लोक में, भागवत के श्लोक में उद्धव जी, उद्धव जी कहते हैं श्लोक, वो कहते कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम, कि इन भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा दयालु और कौन हो सकता है? और कौन है जिसकी शरण किसी को ग्रहण करनी चाहिए इन भगवान श्री कृष्ण के अलावा? तो ये वो श्लोक था जब सुखदेव गोस्वामी, इन्होंने जब सुना तो आकर्षित हुए, वो इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने सारा अपना ब्रह्म साक्षात्कार वो भूल गए। पहले से इंद्रिय भोग सब कुछ भूले हुए थे, ब्रह्म साक्षात्कार थे वो, परंतु वो भी भूल गए। अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना आकर्षित, केवल पूतना के उद्धार की इस लीला, एक थोड़ा सा संक्षिप्त दृष्टांत सुनकर, तो इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी अब सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज को, तो सुखदेव गोस्वामी जब इस लीला पर आए तो सुखदेव गोस्वामी को याद आ गया, उन्हें याद आ गया कि यही वो लीला थी जिसने मुझे आकर्षित की थी। यही वो लीला थी जिसके वजह से मैं भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित हुआ, मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हुआ। तो इसलिए जब ये लीला वो सुनाने जा रहे हैं तो वो अब अपने अंतःकरण से, हालांकि पूरी भागवत वो अपने अंतःकरण से सुना रहे थे, परंतु विशेष रूप से पूतना उद्धार की लीला सुखदेव गोस्वामी बहुत ही विस्तार से और बहुत ही रस लेकर सुना रहे हैं वो परीक्षित महाराज को। तो पूतना उद्धार की जो लीला है, इस लीला दशम स्कंद में जो इसका विवरण है छठे अध्याय में, इस लीला को सुनाने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक सुनाते हैं और वो श्लोक है परीक्षित महाराज के लिए नहीं बल्कि वो श्लोक है हम सब के लिए जो आज पूतना उद्धार की लीला श्रवण करने वाले हैं। वो है फल स्तुति। पूतना उद्धार की लीला श्रवण करने की फल स्तुति क्या है, क्या फल मिलता है? आजकल लोग हर बात पर प्रश्न पूछते हैं ना, भाई आपकी भागवत सप्ताह में मिलेगा क्या? हाँ? या कोई यदि कुछ पढ़ाई लिखाई करता है, कुछ बिजनेस चालू करता है तो यही प्रश्न, क्या मिलेगा, फायदा नुकसान? फायदा नुकसान ये बहुत देखा जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कैलकुलेटिव मेंटालिटी, कि हम हर समय इस बात का कैलकुलेशन करते रहते हैं, इस बात की गणना करते रहते हैं, यहां पर कितना फायदा है वहां पर कितना नुकसान है, यहां पर फायदा है यहां पर जाऊं वहां पर नुकसान है वहां पर न जाऊं, तो हमारी बुद्धि क्या हो गई है, फायदा नुकसान फायदा नुकसान। ये क्यों है बुद्धि ऐसी? क्योंकि ये सारे जो विज्ञापन हम देखते हैं इनमें क्या दिखाया जाता है, आप हमारे इस स्कीम में पैसा डालिए 5 साल में दुगना, आप ये पदार्थ खरीदिए इसके साथ ये मुफ्त, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदिए बाकी 2 मुफ्त। तो ये सारे जो विज्ञापन फिर से टीवी पर ही आ रहे हैं, ये टीवी देखने के वजह से फिर फायदा नुकसान। तो हम भागवत भी जब श्रवण करने आते हैं तो कई बार ये बुद्धि आ जाती है, भैया ये हरे कृष्ण संस्था भागवत करा रही है कुछ फायदा होना चाहिए ना, तो क्या फायदा है? तो पूतना उद्धार लीला श्रवण करने का फायदा क्या है, श्रवण करना चाहेंगे कि पूतना उद्धार की लीला श्रवण करने का फायदा या लाभ क्या है, ये सुखदेव गोस्वामी अपने ही मुख से सुना रहे हैं। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्भकम् अद्भुतम् शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, तो हम ये अंतिम श्लोक पहले ले रहे हैं ताकि हम उस भावना में रहें अब जो हम सुनने वाले हैं श्रवण करने वाले हैं पूतना का उद्धार तो यहां पर कहा गया है यह एतद पूतना मोक्षम, यह जो पूतना मोक्ष की कथा, यह एतद जो मनुष्य, कौन सा मनुष्य, भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है अर्थात हम सब और यहां पर तो विशेष भारतीय हैं जो बैठे हैं, जो कि न केवल भारत भूमि में जन्मे हैं बल्कि भारत भूमि में, ऐसी पुण्य भूमि में, नासिक जैसी पुण्य भूमि में, तो इनके विषय में कहा गया है। तो सुखदेव गोस्वामी मानो आप नासिक निवासियों को कह रहे हैं, हे नासिक निवासीय पूतना मोक्षम कि जो मनुष्य भारत भूमि में जन्मे हैं और ऐसी पुण्य भूमि में जन्मे हैं, वो जब इस पूतना मोक्षम, देखिए सुखदेव गोस्वामी पूतना वद नहीं कह रहे, पूतना मोक्षम, पूतना को जो मोक्ष प्राप्ति हुई, इस कथा को कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम, कृष्ण जो कि अर्भक थे, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे से थे, हम लीला में इसके विषय में चर्चा करेंगे कि भगवान कितने से थे। अर्भकम, अर्भकम का अर्थ है नन्हे से, छोटे से भगवान, परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अर्भकम इसके साथ साथ अद्भुतम, वो केवल छोटे से नहीं अपितु अद्भुतम थे वो। और उन्होंने जो पूतना का उद्धार किया, उसे जो भक्ति प्रदान की, धातृचितम दी, सदगति दी, ये जो पूतना श्रुणुयात, जब इस कथा का कोई श्रवण करता है, श्रीमद् भागवत को कहा गया है श्रुतेक्षितः कि भगवान श्री कृष्ण की लीला हम श्रीमद् भागवत के द्वारा देख सकते हैं। एक्षितः उसका अर्थ है देखना, कैसे देख सकते हैं, श्रुतः सुनने से भगवान श्री कृष्ण की लीला सामने दिखाई देती है, तो श्रुणुयात, परंतु ये श्रवण होना कैसा चाहिए, श्रद्धया, श्रद्धा के साथ। जब श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण के भक्त, भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान श्री कृष्ण के गुण, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण का धाम, भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में जो कुछ है, जब उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है और उस श्रद्धा से जब हम श्रवण करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या फायदा है, क्या फायदा है, एक तो मर्त्यो, हम सबको क्या कहा गया है, मर्त्यो, जैसे कि कल हमने इसकी चर्चा की, नोटिस हम सब के ऊपर प्रकृति ने लगा दिया, ये मकान खाली करो, कब वो नहीं बताया, वो कब भी हो सकता है, वो अभी भी हो सकता है, डरिए मत। भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही है तो इससे अच्छी स्थिति और नहीं हो सकती, यदि वो नोटिस भी काम कर जाए तो मैं देख रहा हूं थोड़ा डर गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे मर्त्यो देखिए, कोई व्यक्ति यदि हमें ऐसे कहे तो गाली लगेगी। हम आपस में एक दूसरे का परिचय ऐसे नहीं देते, या मिलते हैं तो हे मर्त्य कैसे हो आज, हे मर्त्य जीवन कैसे चल रहा है, ऐसा हम नहीं पूछते। परंतु सुखदेव गोस्वामी वो स्तर पर हैं, वो सब कुछ कच्चा चिट्ठा बता रहे हैं हमें कि हमारी स्थिति क्या है, मर्त्य। और यदि हमें हमारी उस मर्त्य स्थिति से उबरना है तो क्या करना है, श्रुणुयात। किसके विषय में? पूतना मोक्षम। कैसे? श्रद्धया। और इसका लाभ क्या है? गोविंदे लभते रतिम। भगवान श्री गोविंद, इनके प्रति रति, भगवान श्री गोविंद इनके प्रति अनुराग, इनके प्रति भक्ति, ये हमें मिलेगी। तो कई लोग सोच रहे होंगे, अरे भाई क्या, हम तो सोचे कि कुछ करोड़पति बनेंगे या फिर कुछ धर्म अर्थ काम ये सब कुछ मिलेगा, तो क्या गोविंद रति? ये बहुमूल्य वो रत्न है, वो खजाना है, जिसे यदि हम करोड़ों जन्म भी ढूंढ कर निकालें तो ढूंढने से नहीं प्राप्त होगा ये खजाना। कौन सा खजाना? गोविंदे लभते रतिम। ये खजाना इनकी, गोविंद की कृपा से ही हमें प्राप्त होगा, जैसे उन्होंने पूतना के ऊपर अपनी कृपा बरसाई। तो सबसे पहले ये जान लेना है कि ये फायदा है यदि हम श्रद्धा से श्रवण करेंगे इस लीला का। तो पूतना उद्धार की जो लीला है, इसमें हम क्या क्या शिक्षाएं, किन किन व्यक्तियों से कौन कौन सी शिक्षाएं ले रहे हैं, ये हम आज इसका श्रवण करेंगे। तो पूतना उद्धार की जो लीला है, इनमें तीन पार्टियां हैं। सबसे पहले अभिनेत्री कौन है? पूतना। तीन एक्टर या एक एक्ट्रेस इसमें, और बहुत से और भी। तो पूतना ये एक अभिनेत्री, और भगवान श्री कृष्ण ये अभिनेता, जो कि सबके नेता हैं, और ब्रजवासी गण, विशेष रूप से यशोदा एवं गोपियां। तो इन तीन पार्टियों से पूतना उद्धार की इस लीला में हम क्या सीखते हैं, क्या शिक्षाएं हमें मिलती हैं? क्योंकि ज्यादा केवल पूतना और भगवान श्री कृष्ण में ही आदान प्रदान हुआ, और उसके पश्चात यशोदा और रोहिणी और अन्य गोपियां भी आईं। परंतु नंद महाराज यहां पर इस अध्याय की शुरुआत हुई है कि नंद महाराज वो सोच रहे थे कि ये बात फैली हुई है। कौन सी बात फैली हुई है? ये बात फैली हुई है कि कंस जो है वो, ये जो कृष्ण है अर्भक, इसकी हत्या करने हेतु वो षड्यंत्र रच रहा है मथुरा में। तो नंद महाराज ये उड़ती हुई खबर, कहते हैं ना उड़ती हुई खबर नंद महाराज सुने थे। तो नंद महाराज ने सोचा, अब देखिए उनका वात्सल्य प्रेम, नंद महाराज जब उन्होंने ये उड़ती हुई खबर सुनी कि कंस योजना बना रहा है कृष्ण को मारने की, तो नंद महाराज वो सोच रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने कृष्ण की रक्षा के हेतु अपना सोच विचार रखा कि कृष्ण की रक्षा मैं कैसे करूं। ये नहीं कि अरे भाई कृष्ण से संबंधित मैं हूं, यदि कंस किसी राक्षसों को भेजेगा कृष्ण को मारने के लिए तो मेरा क्या होगा, नहीं, अपने विषय में नहीं सोच रहे थे, अपितु वो सोच रहे थे कृष्ण के विषय में। और चिंता करते हुए नंद महाराज ने सोचा कि जो वार्षिक कर है टैक्स जो कि कंस को देना होता था उन्हें, ये जो वार्षिक कर इसका कुछ बकाया बाकी है जो मैंने अब तक कंस को दिया नहीं है, तो यदि कंस इस बहाने गोकुल में आता है, किस बहाने, कर वसूल करने के बहाने आता है, तो यदि कंस कर वसूल करने के बहाने गोकुल में आता है तो कंस मेरे पुत्र का ऐश्वर्य देख लेगा, मेरे पुत्र का वो ऐश्वर्य देख लेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब से वो गोकुल में आए तब से गोकुल का ऐश्वर्य बढ़ गया था। तो तुरंत कंस समझ जाएगा कि यही देवकी का आठवां पुत्र है, यही वो विष्णु है जो कि मेरे मारने के लिए, मुझे मारने के लिए प्रकट हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए कंस यहां न आए, इसलिए नंद महाराज स्वयं चले गए, कहां, मथुरा, स्वयं वो चले गए मथुरा कर देने के लिए कंस को, ताकि कंस न आए। तो अब नंद महाराज और वसुदेव बहुत अच्छी मैत्री इन दोनों की, अरे भाई दोनों पिता बने हैं भगवान के तो मैत्री तो होनी ही थी। तो वसुदेव के पास, अब वसुदेव वो कारागृह में नहीं थे, कंस ने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि अब इन्हें कारागृह में रखकर फायदा क्या। तो मथुरा में जो भी मीटिंग हुआ करती थी कंस के राज्य में, कंस के राजमहल में जो भी मीटिंग हुआ करती थी, इष्ट गोष्ठी, उसमें केवल एक ही विषय पर चर्चा हुआ करती थी, ये आठवां पुत्र, देवकी का आठवां पुत्र मारना है, कहां पर है, कहां पर है। तो वसुदेव वो उस मीटिंग में हुआ करते थे, तो वसुदेव जानते थे कि हाल ही की जो मीटिंग हुई है कंस के राजमहल में, कंस ने नियुक्त किया है, कंस ने किसी को नियुक्त किया है गोकुल में जाकर उत्पात मचाने के लिए। तो वसुदेव ये जानते थे, वसुदेव ये जानते थे, इसलिए वो ज्यादा नंद महाराज के साथ समय नहीं बिता रहे थे। और नंद महाराज जब आए तो वसुदेव ने नंद महाराज को अपने घर नहीं बुलाया, वसुदेव गए नंद महाराज से मिलने के लिए। क्यों, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि यदि वसुदेव नंद महाराज को अपने घर बुला लेते तो घर में देवकी भी थी, और देवकी एक स्त्री होने के नाते भगवान श्री कृष्ण की माता होने के नाते वो अपने वात्सल्य प्रेम को रोक नहीं पाती थी। इसलिए देवकी तुरंत पूछ बैठती नंद महाराज से, मेरा लाला कैसा है, मेरा कृष्ण कैसा है। और अब तक ये रहस्य नंद महाराज को ज्ञात नहीं था कि कृष्ण जो है वो देवकी और वसुदेव के पुत्र है। तो इसलिए देवकी से नंद महाराज को दूर कैसे रखा जाए, वसुदेव जी अपने घर से निकलकर जहां पर नंद महाराज रुके हुए थे उस स्थान पर गए मिलने के लिए। और वहां जाकर उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त वार्ता की नंद महाराज से, और उसमें उन्होंने ये संकेत नंद महाराज को दे दिया। नंद महाराज थोड़ा रुकना चाहते थे और समय वसुदेव के साथ बिताना चाहते थे, परंतु वसुदेव जी ने नंद महाराज को कहा, नहीं, आप तुरंत निकल जाओ, तुरंत आप निकल जाओ, क्योंकि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। तो और ये नहीं बताया कि क्या उत्पात होने वाला है, केवल इतना संकेत दिया। तो शुकदेव गोस्वामी अब पूतना उद्धार का जो अध्याय है इसकी शुरुआत करते हैं। नंदपति वच शौरैर नमृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पाता गम शंकितः। अब नंद महाराज मथुरा से वृंदावन की ओर निकल पड़े। वसुदेव जी का जो आदेश उसका पालन करने हेतु वो निकल पड़े, परंतु रास्ते में नंद महाराज ये क्या सोच रहे हैं, नंद महाराज सोच रहे हैं कि वसुदेव जी जो कुछ कहते हैं वो असत्य नहीं हो सकता। क्यों असत्य नहीं हो सकता? क्योंकि नंदपति वच शौरय न मृषेति विचिन्तयन् कि वसुदेव जी, इनका इतिहास बताता है कि वो एक प्रामाणिक व्यक्ति है, वो कोई भी गलत बात नहीं कहेंगे, वसुदेव जी मजाक नहीं करेंगे मुझसे, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। तो वसुदेव जी ने जब ये संकेत मुझे दिया है तो इसमें कुछ न कुछ सत्यता या वास्तविकता होनी ही चाहिए। क्या उत्पात ऐसा हो सकता है गोकुल में? हालांकि पहले से संकित वो भी इस विषय में थोड़ा संकेत यहां वहां देखे थे कि कंस कुछ उत्पात कर सकता है। परंतु देखिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि नंद महाराज अब चिंतित ये सोचते हुए कि कौन सा ऐसा उत्पात हो सकता है जिसके विषय में वसुदेव जी ने संकेत किया है, चिंतित। तो यहां पर नंद महाराज अपने उदाहरण से हम सबको सिखा रहे हैं कि जब हम चिंता में जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये आपसे पूछूंगा कि हम सब चिंता में जाते हैं, इस पर विश्वास है कि नहीं आपको? हम सबके जीवन में चिंता है कि नहीं? कल हमने वो श्लोक लिया, वृद्धो तावस चिंता आसक्त, और हम सभी किसी न किसी प्रकार से वृद्ध हैं, तो चिंता सबको सताती रहती है। एक छोटा सा बालक चिंता करता है, कब मैं बड़ा होऊंगा, कब मैं पिताजी की तरह ऑफिस जाऊंगा और सबको डांट फटकारूंगा। अभी तो मुझे ही सब डांट फटकार मिलती है। बचपन में मैं सोचा करता था कि कब वो दिन आएगा जब मैं अपने पिताजी जैसा बनूंगा। ये देखो पिताजी ऑफिस से आते हैं, कोई होमवर्क नहीं, आराम से ऑफिस से आए और सब कुछ तैयार रहता है इनके लिए, चाय नाश्ता खाना पीना और फिर जाकर क्लब में खेलते हैं और ये सब कुछ। कब वो दिन आएगा जब मैं भी इनकी तरह बड़ा होऊंगा और कल की चिंता नहीं रहेगी मुझे। स्कूल जाने वाला विद्यार्थी, उसकी कल की चिंता क्या है? होमवर्क, टीचर होमवर्क पूछेगी और इतना ही समय मिलता है। सुबह सुबह स्कूल में भेज दिया जाता है और शाम को लौटना पड़ता है, थोड़ा ही समय खेलने का भी समय चला गया। तो उतने से समय में जो दोस्त हैं वो बुला रहे हैं खेलने के लिए, माता कह रही है खाओ, टीचर ने कह दिया है होमवर्क करो। और आजकल तो केवल स्कूल में ही सब खत्म नहीं हो जाता, स्कूल से आने के पश्चात फिर ट्यूशन, फिर वो सब कुछ उठाकर जाओ ट्यूशन में, वहां पर एक और बैठे हैं, वो फिर और कुछ सुनाएंगे और कुछ देंगे। तो इतनी सारी चिंता एक बालक के अंदर भर दी जाती है आजकल, होमवर्क की चिंता, टीचरों की चिंता, परीक्षा की चिंता और रिपोर्ट कार्ड साइन कराने की चिंता। ये सबसे बड़ी चिंता हुआ करती थी हमारी कि ठीक है होमवर्क नहीं भी किया हो परंतु पिताजी को पता नहीं लगेगा, परंतु जब रिपोर्ट कार्ड साइन कराना होता है तो पिताजी को दिखाना पड़ता और वो देखते हैं, बेटा ये क्या है, कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो वो एक चिंता, तो विद्यार्थी के जीवन में चिंता। जब वो बड़ा हो जाता है, कल हमने सुना तरुणस्तावत तरुणी चिंता, तरुण अवस्था में आ जाता है तो अब कौन सी तरुणी आएगी मेरे जीवन में, कौन है वो ड्रीम गर्ल, मेरे सपनों की रानी या मेरे सपनों का राजा, कौन है वो, कब आएगा, कब आएगी ये चिंता, आएगी कि नहीं, आएगा कि नहीं। तो ये चिंता तरुण अवस्था में होती है और फिर जब वो आ जाती है या आ जाता है तब तो फिर चिंताओं का लिस्ट क्या कहे, कहने की आवश्यकता है नहीं, नहीं ना, हम सब जानते हैं। उसके विषय में तो माइक आपकी तरफ करना होगा तो आप बताएंगे अच्छे से, आप ज्यादा अच्छा उस पर विश्लेषण कर पाएंगे। तो फिर चिंता, फिर वृद्धावस्था, सब अलग अलग प्रकार की चिंता। जो बूढ़े व्यक्ति कई बार ऐसी चिंता, चिंता छोटी छोटी चीजों की चिंता, अब कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ चला गया, रिटायर हो गए भाई, पैसा कमा लिया, सब भोग कर लिया, अब बस घर में है, परंतु वहां पर भी चिंता, अरे 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 वो नल बंद करो पानी बह रहा है, अरे बत्ती बुझाओ बिल भरेगा, अरे दरवाजा तो बंद करो। आजकल के बच्चे वो चिंता, अरे भाई चिंता करनी चाहिए कि अंत जब चिता आएगी। चिंता और चिता में अंतर क्या है, एक बिंदु का, परंतु बहुत अंतर है, केवल एक बिंदु का नहीं। अंतर यह है कि चिता केवल अंत समय में जलाती है और चिंता जीवन भर जलाती है। वृद्धोतावस चिंता सकता। तो हमारे हर जीवन के हर इस पहलू में और स्तर में चिंता ही चिंता। तो यहां पर नंद महाराज हमें सिखा रहे हैं कि जब हम चिंतित हों तो हमें क्या करना है। जैसे नंद महाराज अब चिंतित हैं किसके विषय में, भगवान के विषय में, उनके पुत्र के विषय में। हरिम जगाम शरणम, उस चिंता में उन्होंने भगवान श्री हरि, हालांकि वो अपने पुत्र को हरि नहीं मान रहे थे, उनके नंद महाराज के घर में भगवान श्री नारायण के अर्च विग्रह थे। तो नंद महाराज के घर में श्री नारायण के अर्च विग्रह, उनकी शरण नंद महाराज ले रहे हैं, उन हरि की शरण, उन श्री हरि नारायण की शरण नंद महाराज ले रहे हैं कि कृपया आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। ये नहीं जानते कि अरे भाई वो श्री हरि नारायण के स्रोत हैं ये। तो यहां पर नंद महाराज चिंता है उनके अंदर, चिंतित हो रहे हैं परंतु शरण ले रहे हैं श्री हरि की। तो हमारे जीवन में भी जब हम चिंतित हो तो शरण लेनी चाहिए भगवान श्री हरि की, न कि हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी की और बाकी बहुत सी चीज, हमारे बैंक बैलेंस की और इनकी, नहीं, भगवान श्री हरि की शरण। तो यहां पर अब सुखदेव गोस्वामी वो नंद महाराज के विषय में कहकर अब बता रहे हैं कि वो कौन सा उत्पाद, जिसके विषय में संकेत किया था श्री वसुदेव जी ने नंद महाराज को, वो कौन सा उत्पाद अब आने वाला है। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, कम से न प्रहित घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निघ्नती पुर ग्राम व्रजा दिशु। कम से न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, ये राक्षसी जो सबसे पहली राक्षसी पूतना, जिसको कंस ने नियुक्त किया। अब देखिए इसका नाम भी पूतना, पूतना इस शब्द का अर्थ क्या है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं पूता मद भावम आगत वीतराग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रित। पूता मद भावम आगत भगवान कहते हैं, पूता, पूता का अर्थ है हमारे संचित पुण्य कर्म, जो संचित पुण्य कर्म होते हैं उसे कहते हैं पूता संस्कृत, या जब हमारा शुद्धिकरण होता है उन पुण्यों के वजह से तो उसे भी पूता कहते हैं। त्रय विद्यमान सोम पा पूत पापा, यहां पर भी भगवान कहते हैं गीता में पूता। तो पूता का अर्थ है संचित पुण्य कर्म और हमारी आंतरिक शुद्धता। तो पूतना का अर्थ क्या हुआ, पूतना का अर्थ है वो राक्षसी जो संचित पुण्य कर्मों को हर ले, जो व्यक्ति के संचित पुण्य कर्म शुद्धिकरण से उसे उस पद से च्युत करा दे, वो है पूतना, ये उसका नाम। हरि बोल। तो यहां पर कमसेन प्रहिता घोरा पूतना का विवरण दिया जा रहा है कि पूतना कैसी थी, घोरा, घोर पूतना थी वो, घोर रूप था उसका। तो वो पूतना जो घोर रूपी, परंतु अब उसकी डिग्रियां बताई जा रही कि पूतना ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की थी। एक तो घोर रूप उसका, इसके ऊपर बाल घातिनी, बालकों को मारने में बहुत निपुण, ये पूतना एकदम निपुण, छोटे छोटे बालकों को मारने में। शिशुम चचार निगनंती, छोटे छोटे शिशुओं को मारने में ये पूतना बहुत निपुण थी। तो ये पूतना, ये इसकी डिग्रियां, पहले से ही ये निपुण है किसमें, बालकों को मारने में। और इसके ऊपर कंसेन प्रहिता घोरा, इसके ऊपर कंस ने बुलाकर उसे आदेश दिया है, प्रहिता आदेश दिया कि जाकर ब्रजमंडल के जितने शिशु हैं उन सब की हत्या करो। तो अब तो भाई पूतना की आदत है बालकों की हत्या करने, और यहां पर अब सरकार, कंस की सरकार, सरकार मान्य हो गया है कि नहीं, वो जगह जगह पर लिखते हैं ना सरकार मान्य, साड़ी माड़ी केंद्र सरकार मान्य देशी दारू की दुकान। तो कई बार लोग गर्व से जाते हैं, सरकार मान्य दुकान में जा रहा हूं भाई, ऐसी वैसी दुकान में नहीं जा रहा, सरकार मान्य। तो अब देखिए, किसी को पीने की आदत और उसके ऊपर सरकार की मान्यता लग जाए, तब तो फिर सोने पे, अच्छा जैसे कि ये कई बार देखा जाता है लोगों के अंदर डायन घुस जाती है ना, पुतना जैसी डायन बोलते हैं ना, अरे डायन घुस गई इसके अंदर, तो लोगों के अंदर डायन घुस जाती है। तो एक ऐसे प्रकार के लोग हैं जो इन लोगों के अंदर से डायन को बाहर निकालते हैं, कोई जानता है उन्हें क्या कहते हैं, ओझा, उन्हें ओझा कहते हैं, ओझा, कि जो किसी में डायन का संचार हुआ है तो डायन को बाहर निकालने का जो काम करते हैं उन्हें, उस जाति को कहते हैं ओझा। तो अब एक कहावत है कि भाई किसी के अंदर डायन का संचार हुआ है तो उस व्यक्ति को उस डायन से मुक्ति दिलाने वाला है ओझा, है कि नहीं। तब यदि उस डायन ने उस ओझा से विवाह कर लिया, हाँ तो भाई फिर उस व्यक्ति की क्या गति होगी जिसमें डायन ने संचारित हुआ ही हुआ। तो ये एक कहावत है, मुहावरा है, एक तो डायन ऊपर से विवाह हुआ है ओझा से, तो भी भाई कौन किसे बचाएगा। तो यहां पर एक तो पूतना, इसके ऊपर बाल घातनी शिशुम स्निग्नंती, और इसके ऊपर कंसेन प्रहिता, कंस ने अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो दे दिया, और प्रहिता बोला जाकर मारो। जैसे दक्षिण भारत में, कर्नाटक में एक मुहावरा ऐसा आता है कि एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के पास जाता है तो कुछ अपनी बीमारी दिखाने के लिए, डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर उसे देखकर, उसकी बीमारी को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर उसे कहते हैं कि ये दवाई लो और ये दही के साथ लो। तो इसमें इस मुहावरे में कहा गया है कि इस मरीज को दही बहुत अच्छा लगता था खाना, तो पहले से दही खाना अच्छा लग रहा है, अब डॉक्टर ने भी कह दिया दही खाओ। अरे वाह, इससे अच्छी स्थिति और क्या होगी। तो यहां पर पूतना की स्थिति ये ही, बाल घातनी शिशुंस निगनंती, और इसके ऊपर कंसेन प्रहिता, कंस ने अपना आदेश पूतना को दिया जाकर मारो। पूरा ग्राम व्रज आदिशु, कहां पर? पूरा ग्राम व्रज आदिशु, ये जितना भी ब्रज मंडल है, इस ब्रज मंडल में जितने भी नन्हे नन्हे शिशु पैदा हुए हैं सबका हत्या कर दो। तो पूतना एकदम उत्साही इस कार्य को करने के लिए पूतना निकल पड़ी। अब देखिए यहां पर हमें यह समझना है कि पूतना वो एक ऐसे नक्षत्र में निकली थी भगवान श्री कृष्ण की हत्या करने, जिसे कहते हैं आश्लेष्य नक्षत्र। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था? रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र से आश्लेष्य नक्षत्र 6 दिन का अंतराल होता है। रोहिणी नक्षत्र से आश्लेष्य नक्षत्र 6 दिन बाद आता है। तो पूतना इस दिन, जिस दिन पूतना का उद्धार हुआ उस दिन आश्लेष्य नक्षत्र था, और भगवान का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में। तो भगवान कितने बड़े थे? 6 दिन के। भगवान केवल 6 दिन के थे, तो भगवान 6 दिन के, और ये पूतना, इसके विषय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे। तो परीक्षित महाराज जब सुन रहे हैं, अब हम तो ये कथा बहुत बार सुने, हम जानते हैं, हाँ वो देखा है टीवी में भी, कृष्णा सीरियल में, हम जानते हैं भगवान मारने वाले हैं इस पूतना को। परंतु परीक्षित महाराज वो तुरंत जब उन्होंने ये सुना कि भगवान केवल 6 दिन के और पूतना ऐसी पूतना, बाल घातिनी पूतना, कंस द्वारा प्रेरित ये पूतना निकल पड़ी है उन 6 दिन के कृष्ण को मारने के लिए, तो परीक्षित महाराज चिंतित हो गए। परीक्षित महाराज वो चिंता में चले गए। तो सुखदेव गोस्वामी अब परीक्षित महाराज के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। हम में से कितने लोग चिंता में चले गए ये सुन के कि पुत्रा निकली है भगवान 6 दिन के भगवान को मारने के लिए। चिंता हुई, हमको चिंता होते, अरे अभी तक निकली है, 7 बज रहे हैं अभी तक पूतना निकली है खाली, हमारी चिंता क्या है, अरे कब ये सब कुछ होगा उद्धार या निपटेगा, जल्दी करो थोड़ा, हमारी चिंता यही है। परंतु परीक्षित महाराज वो ऐसी चिंता में चले गए कि भाई 6 दिन के हैं भगवान और ये पूतना, ऐसी पूतना निकली घोरा, तो क्या होगा। और वो भी नंद महाराज नहीं है, जो वहां के मुखिया, ब्रजमंडल के मुखिया नंद महाराज सारे गोपों के, वो वहां पर नहीं है, केवल यशोदा रोहिणी और अन्य गोपियां बस यही हैं, केवल स्त्रियां हैं, और ये पूतना निकल पड़ी है। तो परीक्षित महाराज चिंतित। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज को चिंतित चेहरा देखा, तो अगला श्लोक वो अब लीला नहीं सुना रहे, रोक दिए लीला। लीला रोक कर अब वो परीक्षित महाराज की चिंता दूर कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज को विशेष चिंता इस लीला में क्यों हुई? क्योंकि पूतना वो विष लगाकर जा रही है, और परीक्षित महाराज की हत्या भी विष के द्वारा ही होने वाली है। तक्षक जो सातवें दिन परीक्षित महाराज को डसने वाला है अपने विष को अंदर डालकर। तो इसलिए परीक्षित महाराज वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं कि हम दोनों की स्थिति एक ही जैसी है। यहां पूतना निकली है अपना विष पिलाने के लिए, जैसे मुझे विष मिलने वाला है सातवें दिन में। तो परीक्षित महाराज सहानुभूति जता रहे हैं, इसलिए चिंतित हुए। अरे भाई, मैं तो एक राजा, मैं इतना बड़ा, और कथा में आपकी सुन रहा हूं, परंतु छोटे से 6 दिन के भगवान। तो देखिए, सुखदेव गोस्वामी अब वो परीक्षित महाराज की चिंता दूर कैसे करते हैं, कौन सा श्लोक वो बोलते हैं। वो कहते हैं, नयत्र श्रवणादिनी रक्षोघ्नानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धन्यश्च तत्र हि। वो कहते हैं, हे परीक्षित, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत चिंतित हो गए, बिल्कुल चिंता मत करो। अरे भाई, जिस स्थान पर वो भगवान जिनके विषय में मैं सुनाने जाने वाला हूं, जिस स्थान पर उन भगवान की लीला का श्रवण कीर्तन होता है, उस स्थान पर कोई भी प्रकार का प्रकोप नहीं आ सकता। जहां पर भागवत की कथा हो रही है, वहां पर कोई भी अपशकुन या कोई भी उत्पात नहीं हो सकता। जहां पर केवल श्रवण कीर्तन हो रहा है भगवान का, तो परीक्षित तुम क्यों चिंता कर रहे हो। अरे उन भगवान की जो कथा जहां पर होती है, जब वहां पर कोई उत्पात नहीं हो सकता, तो उन भगवान के ऊपर कौन उत्पात कर सकता है। नयत्र श्रवणादीनी, तो यदि इस श्लोक को एक दूसरे तर्क से हम समझें कि जब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अरे भाई, जहां पर कथा चल रही है वहां पर कोई उत्पात नहीं हो सकता, तो फिर साक्षात भगवान जहां पर उपस्थित हैं उनके साथ कौन उत्पात कर सकता है। तो विपरीत तर्क इसका क्या होगा कि जहां पर भगवान की कथा नहीं हो रही, वहां पर ये आशा रख लेनी चाहिए कि कोई उत्पात अवश्य ही होगा। तो यदि हमें भी हमारे जीवन में उत्पात नहीं लाना, तो हमारे जीवन में भी भगवान या श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन होते रहना चाहिए। तो परीक्षित महाराज को जब ये सुनाया गया, तो परीक्षित महाराज अब संभल गए। अब उनकी चिंता दूर हुई, वो संभल गए कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि जहां पर श्रवण कीर्तन उन भगवान का होता है, वहां पर कोई उत्पात नहीं हो सकता, तो फिर उनके साथ उनके साक्षात संदर्भ में कौन सा उत्पात होगा। तो देखिए, कथा को रोककर विराम देकर ये श्लोक कहा सुखदेव गोस्वामी ने, परीक्षित महाराज की चिंता दूर करने के लिए। तत्पश्चात फिर से अब पुतना का विवरण फिर से शुरू हो रहा है। साखेचरी एकदोत्पत्य पूतना नंदगोकुलम योषित्वा माययात्मानम प्राविशात कामचारिणी। पुतना वो जानती थी कि मैं नंद गोकुल में अपने घोर रूप में प्रवेश करूंगी तो कोई मुझे एंट्री नहीं देगा, वो जानती थी। तो पुतना वो अपना रूप बदलकर नंद गोकुल में गई। और वो कैसा रूप लेकर गई? योषित्वा मायया आत्मानम, एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप लेकर गई वो। पूतना जानती थी वो कोई मूर्ख राक्षसी नहीं थी। पूतना जानती थी कि ये जो नंद गोकुल है जहां पर ये कृष्ण अवतीर्ण हुए हैं, इनके साथ सारे देवी देवता इर्द गिर्द हैं उपस्थित। तो ये सारे देवी देवता इर्द गिर्द हैं तो मुझे अपने निज घोर रूप में प्रवेश कभी नहीं मिलेगा। तो यदि मुझे प्रवेश अंदर पाना है तो मुझे अपना रूप बदलना होगा, अर्थात मुझे बहुरूपिया बनना होगा। तो पूतना ने अपना रूप बदला और सखेचरी, पूतना को यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं खेचरी। खेचरी का अर्थ जानते हैं? जैसे कि संस्कृत में चर, चर का अर्थ होता है जो विचरण करते हैं। तो एक है जलचर, जलचर का अर्थ क्या है? जो जल में विचरण करते हैं। निशाचर, बंबई में बहुत देखे जाते हैं निशाचर, जो रात्रि में, उनका दिवस रात्रि में शुरू होता है निशाचर। तो जो रात्रि में विचरण करने वाले प्राणी होते हैं उन्हें कहते हैं निशाचर प्राणी। तो यहां पर पूतना के विषय में कहा गया है साखेचरी, जो खम, भगवान खम के विषय में गीता में कहे हैं आकाश। तो जो आकाश में विचरण करे वो है खेचर, परंतु यहां पर ये स्त्रीलिंग पूतना खेचरी। पूतना एयरलाइंस, पूतना का अपना एक एयरलाइंस था, तो सा खेचरी। यहां पर सुखदेव गोस्वामी ये संकेत दे रहे हैं कि पूतना के अंदर ये सारे अलग अलग प्रकार की विभूतियां भी थी, वो उड़ सकती थी, आकाश में उड़ सकती थी पूतना। ये सारी योग सिद्धियां थी पूतना के अंदर, अपने रूप को परिवर्तित कर लेना, आकाश में उड़ पाना, ये सारी सिद्धियां थी पूतना के अंदर। तो एकदा साखेचरी नंद गोकुलम प्राविशत योषित्वा मायया आत्मानम, अपने आत्म निज स्वरूप घोर स्वरूप को वो बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही सुंदर स्त्री में पूतना ने अपने आप को परिवर्तित किया। अब देखिए सुखदेव गोस्वामी पूतना की सुंदरता का विवरण कर रहे हैं कि पूतना कितना सुंदर दिख रही थी। ताम केश बंध व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन नितंब स्तनकृच्छ्र मध्यमाम। पूतना इतना सुंदर बनकर गई थी कि मानो आजकल की कोई मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स भी उसके सामने खड़ी कर दी जाए तो चूहिया दिखेगी। इतनी सुंदर पूतना, और पूतना की सुंदरता का विवरण कर कौन रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी अखंड ब्रह्मचारी। तो सुखदेव गोस्वामी वो इस कथा को और रोमांचक बनाने के लिए पूतना की सुंदरता का विवरण कर रहे हैं। ताम केश बंद, यहां पर देखिए सुखदेव गोस्वामी ये स्थापित कर रहे हैं कि सुंदरता कैसी होनी चाहिए। केश बंद, पूतना के केश बंद थे। आजकल तो क्या कहें आप, केश बांधने के लिए उतने सारे केश भी होने चाहिए, क्या कहते हैं उसे, बॉब कट, काट काट कर काट काट कर। तो आजकल पाश्चात्य देश में हमने देखा, अमेरिका में, वहां पर हमने देखा कि वहां पर स्त्रियां वो अपने केशों का रंग बदलती हैं हर दिन, वो अलग अलग डाय लगा लगा कर। तो यदि उन्होंने कोई पीले वस्त्र पहने हैं जिस दिन, तो केश भी मैचिंग होना चाहिए, ये क्या काले केश, तो केश भी मैचिंग होना चाहिए, तो केश को पीला कर देते हैं। यदि लाल वस्त्र पहने हैं तो केश भी लाल। तो आजकल ये सब हो रहा है, और केश बंद तो खैर भूल ही जाइए। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि यदि सुंदर भी दिखना है तो सुंदर दिखने की क्या क्या विवरण होना चाहिए वो समझ लेना चाहिए। ताम केशबंध व्यति सक्त मल्लिकाम, और मल्लिका पुष्प, मल्लिका पुष्प ये बहुत ही सुगंधित पुष्प होते हैं, तो मल्लिका पुष्पों को अपने केशबंध में पूतना ने लगाया था। आजकल तो केवल प्लास्टिक और केमिकल ये सब लगाया जाता है, पूतना ने कोई लिपस्टिक या केमिकल ये सब नहीं लगाया था, ये सब कुछ पोता नहीं था अपने ऊपर। ऐसा नहीं कि पूतना कोई ब्यूटी पार्लर में गई थी मथुरा के, और वहां जाकर फिर जो कुछ होता है वहां पर वो सब कुछ अपना ब्यूटी सजाकर फिर वहां से बाहर आई, नहीं। ऐसा है कि वैदिक संस्कृति के अनुसार केवल जो प्राकृतिक सुंदरता है उसे निखारने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल ये जो अप्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, क्रीम, लोशन, पाउडर और ये सब क्या क्या पता नहीं, ये इसलिए क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता रही नहीं। तो जितना ज्यादा ये मेकअप किया जाता है इसका अर्थ क्या है, उतनी सुंदरता कम है, क्योंकि फिर जरूरत पड़ता है ना ये सब कुछ पोतने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता है नहीं। परंतु यहां पर पूतना ने इस प्रकार से अपने आप को परिणित किया था कि वो प्राकृतिक रूप से सुंदर लग रही थी, और सुखदेव गोस्वामी इसका विवरण कर रहे हैं कि केशबंध मल्लिकाम, और उसने एकदम बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण किए थे, सुवाससम कल्पित कर्ण भूषण, और वो मुस्कुरा रही थी, बहुत ही सुंदर स्मित, वल्गु स्मित अपांग विसर्ग वीक्षितैर। अब देखिए, यदि कोई स्त्री बहुत सुंदर मेकअप भी कर ले और केशबंद और मल्लिका और ये सब, परंतु यदि हंसे नहीं तो थोड़ा दूर ही रहते हैं लोग, अरे थोड़ा टेम्परेचर हाई लगता है। तो पूतना अपनी सुंदरता को, किसी भी व्यक्ति की सुंदरता बढ़ती कब है, स्मिता, जब व्यक्ति, इसलिए फोटो खींचते समय बोला जाता है ना, अरे भाई जीवन पूरा दुख में होगा तुम्हारा, परंतु अब तो स्माइल प्लीज। तो बाकी समय तो रोते रहते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है स्माइल प्लीज है कि नहीं, और लोग तो लिखते भी हैं अपने घरों में, आज बाहर यहां वहां, कीप स्माइलिंग लिखते हैं, वो आता है कुछ, कीप स्माइलिंग। तो यहां पर पूतना जानती थी कि किसी की सुंदरता निखर कर कब आती है? जब स्मित, वल्गु स्मित, जब वो स्मित हंसी करता है। तो पूतना हंस रही थी। और यहां पर पूतना किसका प्रतीक हो रही है? अब पूतना प्रतीक हो रही है कापट्य का, कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, इसे कहते हैं कापट्य। और भगवान श्री कृष्ण इस लीला में प्रतीक हैं उनकी अहितु की कृपा के। जानते हैं, वो जानते हैं कि पूतना इस कपट से आई है, परंतु वो अपनी कृपा को नहीं छोड़ रहे। और ब्रजवासी वो प्रतीक हैं अनन्य वात्सल्य प्रेम के, इस लीला में हम देखेंगे। तो पूतना जो कि इतना सुंदर बनकर आई, तो पूतना का विवरण सुखदेव गोस्वामी देते हैं कि पूतना एक मखमली मयान में एक तेज धार वाली तलवार हो, वैसी पूतना प्रतीत हो रही थी। तलवार तेज धार की, इतनी तेज धार की यदि स्पर्श भी हो जाए तो काट दे, ऐसी तलवार। परंतु यदि उस तलवार को एक मखमली मयान में कोई डाल दे तो कोई जान नहीं पाएगा कि इसके अंदर की तलवार कितनी धार वाली है। तो देखिए कितना सुंदर ये उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं पूतना के संदर्भ में, कि बाहर से पूतना मखमली मयान की तरह, कितना सुंदर केशबंद मल्लिका वल्गु स्मित, ये सब कुछ विवरण दिया गया, इतनी सुंदर वो लग रही थी, परंतु अंदर ताम तीक्ष्ण, एकदम तीक्ष्ण तलवार की धार के समान उसका हृदय था। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सारे ब्रजवासी वहां पर जब उन्होंने पूतना को देखा तो विशेष रूप से गोपियां यशोदा रोहिणी, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि आज शायद साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हुई हैं पूतना को देखकर। वो ये सोच रहे हैं कि साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हुई हैं नारायण का दर्शन करने के लिए। उनकी दृष्टिकोण से नारायण कौन? उनके घर के अर्च विग्रह। तो उन्होंने, वो अंग्रेजी में कहते हैं रेड कार्पेट वेलकम, पूतना को इस प्रकार का स्वागत पूतना का किया कि आइए आप साक्षात लक्ष्मी। और पूतना अपने एक हाथ में कमल के पुष्प को घुमाते हुए, ऐसा वो सुंदर प्रतीत हो रही थी कि सभी ब्रजवासी स्वागत कर रहे थे पूतना का। तो यहां पर देखिए सुखदेव गोस्वामी ब्रजवासियों की तुलना बुद्धि से कर रहे हैं, कि हमारे जीवन में माया देवी प्रवेश कैसे करती है? सबसे पहले माया देवी क्यों प्रवेश करती है हमारे जीवन में? कृष्ण को मारने के लिए, हमारे अंदर की कृष्ण भक्ति को मारने के लिए पूतना रूपी माया देवी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। सुप्त भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसे वहां से खत्म करने के लिए। तो पूतना की तुलना माया देवी से की गई है, परंतु माया देवी ये बोलकर नहीं आती कि मैं आ रही हूं मारने के लिए। माया देवी हमारे जीवन में प्रवेश कैसे करती है? एक सुंदर स्त्री के रूप में, बहुत सुंदर बनकर हमारे जीवन में प्रवेश करती है माया देवी। और ब्रजवासी मोहित होकर, सारे ब्रजवासी इतने मोहित हो गए कि वो स्वागत करें। तो कई बार हमारी बुद्धि ब्रजवासियों को रोकना था, उनका कार्य क्या है, कृष्ण की रक्षा, इनको रोकना पूतना जैसे राक्षसियों को, परंतु ब्रजवासियों ने स्वागत किया। तो कई बार बुद्धि ऐसी भ्रमित हो जाती है माया को देखकर कि हम माया को रोकने के बजाय स्वागत करते हैं माया का। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका एक ज्वलंत उदाहरण मुझे याद है। बचपन में ये जो करजत स्टेशन है ना, करजत खोपोली के पास करजत स्टेशन, तो वहां पर हम एक बार ट्रेन की प्रतीक्षा में प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, तो हमने देखा और सभी ने देखा वहां पर कि रेल की पटरी के बीच में गधा खड़ा है, रेल की पटरी के बीच में। और गधों को आपने देखा होगा कि गधे जब खड़े होते हैं कहीं पर तो खड़े रहते हैं, बस घंटों खड़े रहेंगे और कई बार एक तक होकर वो देखते रहेंगे, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। तो गधों की आदत है वो खड़े रहते हैं, तो ये गधा कहां खड़ा था, रेल की पटरी के बीच में। तो अभी सभी वहां पर अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, कोई इस ट्रेन की प्रतीक्षा में था, कोई वहां पर, कोई यहां जा रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था गधे के ऊपर इतना, और गधे पे कौन ध्यान देगा, दूसरे गधे ही ध्यान देते हैं गधे पर, तो और कोई गधे भी नहीं थे, दो पैर वाले बहुत थे लेकिन इतने ज्यादा वो ध्यान नहीं दे रहे थे। तो एक ट्रेन का समय हुआ, उसी पटरी पर आ रही थी ट्रेन जिस पटरी पर ये गधा, तो अब जोर जोर से वो अपना हॉर्न बजा रही ट्रेन, गधा दूर, तब सभी को अरे अरे गधे को निकालो बाहर, ट्रेन आ रही है, तो सभी पत्थर मारने लगे, क्या कुछ नहीं, चिल्लाने लगे, अरे गधे जाओ यहां से, मर जाओगे, ट्रेन आ रही है, निकलो, ये सब। तो इतना सब कुछ पत्थर वत्थर जब पड़ा गधे के ऊपर, सब चिल्लाने लगे, हॉर्न बज रहा है, तो गधा थोड़ा फिर अपने समाधि से बाहर आया, क्या कुछ हो रहा है शायद, इधर उधर देखने लगा। तो गधे को कुछ थोड़ा लगा कि कुछ गड़बड़ है, मैं कहीं गड़बड़ खड़ा हो शायद, सभी कैमरा मेरे ऊपर है। तो अब देखिए गधा है, गधा क्या किया उसने, जब सब इतनी सारी आवाजें सुनी, पत्थर वगैरह सब पड़ा, तो गधा भागने लगा, कहां, ट्रेन की तरफ। मैंने अपनी आंखों से देखा, ट्रेन की तरफ वो भाग रहा है और ट्रेन हॉर्न मार रही, सभी उसको पत्थर मार रहे हैं, भागो उस तरफ जाओ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मारा गया वो। हम हंसते हैं, हम भी हंस रहे थे, गधा। और हमारी स्थिति क्या है कि जब माया देवी हमें प्रकृति के द्वारा संकेत देती है कि ये मेरा स्वरूप है तुम्हें बांधने के लिए, तो काल रूप हमें संकेत देते हैं कि पटरी से बाहर आओ, परंतु हम और उस गधे के समान हम भी माया की तरफ और भाग, हमें लगता है शायद मेरे लिए कोई सीट रिजर्व किए है ट्रेन के अंदर। तो यहां पर बुद्धि जब भ्रमित हुई तो इस पूतना का स्वागत किया गया, तो पूतना अब अंदर प्रवेश की है। और पूतना की तुलना है एक मखमली मयान के अंदर एक तेज धार वाली तलवार, ये पूतना का कापट्य। तो हमें पूतना से क्या शिक्षा लेनी है कि क्या मेरे अंदर भी पूतना जैसी प्रवृत्ति है, कैसे उसे मैं दूर करूं, ये कापट्य। और भगवान श्री कृष्ण की तुलना की गई है, बहुत ही सुंदर यहां पर उदाहरण दिया गया है। बाल ग्रहस तार विचिन्वती शिशुन यदृच्छयानंद गृहे सदंतकम बालम प्रतिछन्न निजोरु तेजसाम ददर्श तल्पे अग्निम इवाहितम भसि। भगवान श्री कृष्ण वो नंद भवन में अंतःपुर में अपनी शैया पर लेटे हुए 6 दिन के बालक पूतना ने प्रवेश किया। पूतना अब देख रही है भगवान श्री कृष्ण को। तो पूतना ने जब प्रवेश किया तो पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को कैसे देखा? पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को इस तरीके से देखा जैसे कोई प्रज्वलित अग्नि परंतु भस्म से ढकी हुई। जैसे कई बार यज्ञ होता है तो जब यज्ञ होता है तो अग्नि जलाई जाती है यज्ञ कुंड में, तो जो अग्निहोत्री कौन है जो यज्ञ कराता है उसे कहते हैं अग्निहोत्री। तो अग्निहोत्री जब देखता है कि उस अग्नि के ऊपर भस्म जम गई है तो अग्निहोत्री करता क्या है, घी लेता है। अंदर अग्नि है परंतु ऊपर भस्म है, अंदर अग्नि ऊपर भस्म, तो अग्निहोत्री करता क्या है, घी लेकर उसके ऊपर जब डालता है तो अंदर की जो अग्नि है घी की पकड़ में जब आती है वो अग्नि, तो फिर से वो प्रज्वलित होती है। तो यहां पर भगवान की तुलना, भगवान का जो ऐश्वर्य अग्नि की समान है, इतना ऐश्वर्य भगवान का, परंतु भस्म की तुलना की गई है कि भगवान 6 दिन के बालक। तो जो 6 दिवसीय बालक की जो स्थिति है भगवान की, उसकी तुलना भस्म से की गई है। और भगवान के ऐश्वर्य की तुलना जो अब वो दिखाने वाले हैं भगवान स्वयं से की गई है। और जैसे अग्निहोत्री उसी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए जब घी डालता है तो पूतना अब क्या डालने वाली है इन भगवान की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, अपना दूध, अपना दूध वो डालने वाली है इनके मुख में। तो पूतना उस अग्निहोत्री के समान है जो अपना दूध अब इस यज्ञ कुंड में डालने वाली है जहां पर भगवान श्री कृष्ण की तुलना उस अग्नि से की गई है जो भस्म से आवृत है। तो पूतना भी आवृत थी, किससे, मायावी वेशभूषा से। भगवान भी आवृत है परंतु भगवान अंदर से वो अपनी कृपा उसे आवृत किए हैं और पूतना अपने कापट्य को आवृत की थी। दोनों अपने आप को आवृत किए हैं क्योंकि भगवान गीता में क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस दिशा में जिस दशा में वो मेरे तरफ आता है मैं उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूं। जैसे कि रामायण में एक कथा है जब प्रभु राम और लक्ष्मण वो किष्किंधा क्षेत्र पहुंचे तो सुग्रीव जो कि राजा था किष्किंधा क्षेत्र का, सुग्रीव ने दूर से देखा कि ये दो बहुत ही बड़े कंधे वाले और अच्छे शरीर वाले सुंदर बड़े लंबे चौड़े ये दो क्षत्रिय जैसे कौन आ रहे हैं। तो सुग्रीव हर समय डरा हुआ रहता था किससे? अपने भाई से। कौन था? वाली। तो सुग्रीव वाली से डरा रहता था। तो सुग्रीव तुरंत हनुमान जी को भेजता है, जाकर उन्हें पूछो कौन है, वहीं पर रोक दो। तो हनुमान जी को सुग्रीव भेजते हैं भेष बदलकर। हनुमान जी अपना रूप बदलकर जाते हैं। तो हनुमान जी अपना रूप बदलकर एक ब्राह्मण का रूप लेकर वो प्रकट होते हैं राम लक्ष्मण के समक्ष। और हनुमान जी पूछते हैं राम और लक्ष्मण का परिचय। तो राम कहते हैं मैं दशरथ नंदन श्री राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। तो हनुमान जी जब सुनते हैं कि अरे भाई मेरे आराध्य देव मेरे सामने प्रकट हुए और मैं पहचान नहीं पाया, मैं इनका परिचय पूछ रहा था, इतने जन्मों से मैं प्रतीक्षा में हूं कि कब आप मेरे समक्ष आओगे, आप आए और मैं आपको पहचान नहीं पाया, हे भगवान। तुरंत हनुमान जी अपने निज रूप में आए और ये प्रश्न पूछने लगे कि बताओ मैं क्यों आपको पहचान नहीं पाया। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं क्योंकि हनुमान तुम भेष बदल कर आए थे, क्योंकि तुमने अपना परिचय छिपाया इसलिए मैंने अपना भी परिचय छिपा लिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो तुमने अपना असली परिचय अब दिया तो मैं अपना असली परिचय दे रहा हूं। तो यदि हम भी भगवान के सामने अपना असली परिचय नहीं रखते कि मैं कितना गिरा हुआ हूं, मैं कितना कपटी हूं, मेरे अंदर कितने अनर्थ हैं, कितने प्रदूषण हैं, जब तक हम भगवान के सामने अपना कच्चा चिट्ठा नहीं रखते तब तक भगवान हमें शुद्ध नहीं करेंगे। तो पूतना यहां पर कापट्य दिखा रही है, भगवान भी उसी प्रकार से अपने आप को छिपा लिए। परंतु भगवान कापट्य की शरण ग्रहण नहीं की उन्होंने, जैसे कि अग्नि भस्म द्वारा आवृत रहती है और केवल थोड़ा सा ही घी मारने मात्र से अग्नि बाहर आएगी। भगवान आवृत एक बहुत ही विशेष तरीके से थे। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो कहते हैं विभुद्यताम बालक मारिकाग्रहम चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण। जैसे ही भगवान ने ये देखा कि पूतना अब प्रवेश कर रही है, द्वार से अंदर प्रवेश की है पूतना, निमीलिते क्षण पूतना, भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। निमीलिते क्षण, अरे भाई इतनी बड़ी लीला करनी है, इतनी बड़ी राक्षसी पूतना आई है, इसका उद्धार करना है तो फिर अपनी आंखों को बंद क्यों किया? तो हमारे आचार्य बताते हैं, ध्यान से सुनिए और देखिए, भगवान ने आंखें बंद की, आप लोग आंखें खोलिए, कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की, भगवान ने आंखें क्यों बंद की, ये आंखें खोलकर हमें देखना है। तो बहुत से प्रयोजन थे भगवान के, आंखें बंद करने के बहुत से प्रयोजन थे। जैसे पूतना को आते देख भगवान ने आंखें क्यों बंद की, इसके बहुत से प्रयोजन थे। सबसे पहले भगवान पूतना के कपट को सहन नहीं कर सके। यहां पर भगवान को कहा गया है चराचरात्मा। चराचरात्मा का अर्थ है भगवान उनके आत्मा है जो चर हैं और अचर दोनों हैं। परमात्मा के स्वरूप में भगवान हम सबके हृदयों में स्थित हैं। तो भगवान जो कि चराचरात्मा है, भगवान जान गए, भगवान ये जान गए कि ये पुतना कितना कापट्य लेकर आई है। तो भगवान सहन नहीं कर पाए, अरे भाई मारना ही है तो सामने ललकारो, सामने कहो कि आओ युद्ध करो, ये कपट से मारना क्यों? और वो भी कैसा कपट, मेरी माता बनकर आ रही हो मुझे दूध पिलाने हेतु, और उस कपट की शरण ग्रहण करके मुझे मारना चाहती हो। तो भगवान ने कहा ऐसी स्त्री को नहीं देखना मुझे, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली कि ऐसा कापट्य बुद्ध से देखा नहीं जाएगा। तो ये सबसे पहला कारण था कि भगवान ने अपनी आंखें बंद की। दूसरा कारण, भगवान आंख बंद कर ध्यान लगा रहे थे कि ये पूतना का क्या सौभाग्य है, पता नहीं इससे कौन से पुण्य किए होंगे कि ये पूतना आज ब्रज मंडल में इसने प्रवेश कर लिया, और वो भी नंद भवन में और अंतपुर में, और मेरे द्वारा इसका उद्धार होने वाला है। तो कई बार हम जब किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो आंख बंद कर याद करते हैं ना? जब पूछा जाता है बताओ 10 साल पहले इसी समय क्या कर रहे थे, आंख बंदी रहेगी शायद हमारी। तो जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो आंख बंद करते हैं। तो भगवान आंख बंद कर मानो ये देख रहे हैं कि पूतना के पिछले जन्म में जाकर, कि पूतना ने अपने पिछले जन्म में पता नहीं क्या पुण्य किया। अब पूतना के इतिहास के बारे में बताया गया है कि पूतना वो बलि महाराज की बहन थी। जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से सब कुछ हर लिया तो उसका नाम था रत्नमाला। तो रत्नमाला ने जब भगवान सुंदर वामन देव को देखा तो इतना आकर्षण उसके हृदय में हुआ कि वो छोटे से वामन देव को पुत्र रूप में पाना चाहती थी। वो तुरंत उसने इच्छा की कि ऐसे पुत्र को मैं अपना स्तनपान कराना चाहती हूं, इतना सुंदर है, मेरा पुत्र ऐसा होना चाहिए। तो ये इच्छा रत्नमाला को हुई, परंतु जब उसने देखा कि उसके पश्चात यही पुत्र ने सब कुछ छीन लिया है मेरे भाई का, तब द्वेष, तब तुरंत उसी वामन देव उन्हीं के प्रति द्वेष रत्नमाला के अंदर। तो दोनों इच्छाएं की उसने, स्तनपान कराने की इच्छा और मारने की इच्छा। फिर तब फिर उसका जन्म हुआ पूतना, पूतना के रूप में, कि भगवान ने दोनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसकी सहायता की। तो भगवान ध्यान लगा रहे हैं इसके पिछले जन्मों में जाकर कि देखूं तो इसने कुछ पुण्य किया है कि नहीं, कि इसे ऐसा सौभाग्य मिला है कि ये वृंदावन में, नंद गोकुल में, नंद भवन में, अंतपुर में यहां पर प्रकट हुई है। ये दूसरा कारण, भगवान आंख बंद कर शिवजी पर ध्यान लगा रहे थे। शिवजी पर क्यों ध्यान लगा रहे थे भाई? भगवान शिवजी पर इसलिए ध्यान लगा रहे थे कि भगवान सोचे कि भाई ये आई है अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर, ये जहर लगाकर, और ये जहर और विष पीने का काम तो भोलेनाथ ही करते हैं, वो विख्यात हैं, इसलिए उन्हें नाम क्या मिला है, नीलकंठ समुद्र मंथन की कथा में है इसका विवरण कि उन्होंने वो जो हलाहल विष उत्पन्न हुआ समुद्र के मंथन से, तो भगवान शिव जी ने उसका पान किया। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण शिव जी पर ध्यान लगा रहे हैं कि अरे भाई हे भोलेनाथ तुम आओ, ये सारा विष मैं यहां पर भाई वृंदावन में मैं प्रकट हुआ हूं माखन मिश्री खाने के लिए। अभी 6 दिन का हुआ नहीं कि सबसे पहले भोग चढ़ रहा है कालकूट विष का। तो हे भोलेनाथ ये सब तुम्हारा काम है, तुम्हारा डिपार्टमेंट है ये सब जहर वहर खाना। तो भगवान शिव जी को SMS कर रहे थे भगवान, थोड़ा आकर देखो ये कौन पूतना आई है विष वगैरह लगाकर। तो आंख बंद की शिव जी पर ध्यान कर रहे। चौथा कारण, अर्ची पथ बंद हो गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, अर्ची पथ कहते हैं सूर्य और चंद्र का जो पथ होता है उसे कहते हैं अर्ची पथ। तो जब कोई बद्ध जीवात्मा मुक्ति प्राप्त करता है तो वो अर्ची पथ पर चलकर मुक्ति धाम तक पहुंचता है, सूर्य और चंद्र के पथ पर चलकर। तो सूर्य और चंद्र भगवान की दोनों आंखें, एक सूर्य एक चंद्र, ये भगवान की दोनों आंखें हैं। तो अर्ची पथ हुआ तो ये दोनों सूर्य और चंद्र आपस में चर्चा करने लगे। दोनों आंखें भगवान की ये चर्चा कर रही हैं कि ये पूतना का उद्धार भगवान करने वाली है, जो पूतना मारने आ रही भगवान को इसे बिल्कुल मुक्ति नहीं हम देंगे, हमारे अर्ची पथ से ये पूतना नहीं जा सकती, बंद करो। तो अपने आप को बंद कर लिया अर्ची पथ ने, भगवान की दोनों आंखें सूर्य और चंद्र। तो ये कारण था कि भगवान निमीलिते क्षण भगवान ने अपनी आंखों को बंद क्यों किया। भगवान ये सोच रहे हैं भाई मैं ठीक है आया हूं असुरों का वध करने के लिए, पहला असुर वो भी एक स्त्री। अरे भाई कंस ने और किसी को भेजा होता कोई चाणूर मुष्टिक या ऐसा कोई असुर तो ठीक था, ये पहला असुर वो भी एक स्त्री। अब देखिए भगवान आंख बंद कर कर ये सोच रहे हैं कि जब मैं अपने पिछले अवतार में आया था तो उसमें भी यही हुआ था। कौन से अवतार में? राम अवतार में। राम अवतार में भी मैंने सबसे पहले मुझे एक ऐसे असुर का वध करना पड़ा जो एक स्त्री थी। कौन? ताटका। राम अवतार में भी सबसे पहला असुर एक स्त्री। अब इस अवतार में मैंने सोचा कि भाई कोई ऐसा आएगा कि थोड़ा तो कुछ मेल होना चाहिए, पहली राक्षसी ही आ रही है। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, नहीं नहीं भाई फिर से ये नहीं करना। राम अवतार में हो गया अब फिर से ये नहीं। तो आंखें बंद इसलिए की। भगवान ने एक और कारण यह था, छठा कारण, ताकि पूतना भगवान की शक्तियों को न जान पाए। किसी भी व्यक्ति की जो आंखें होती हैं उसके द्वारा उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है हम जान सकते हैं। अब कोई बहुत विख्यात व्यक्ति है, कोई बहुत प्रशिक्षित व्यक्ति है, परंतु यदि जब सोया हुआ रहता है तो कोई जान नहीं पाता कि इसकी कितनी डिग्रियां हैं, इसमें कितने गुण हैं। आंखें जब बंद होती है तो उसकी शक्तियों के विषय में नहीं जान पाता। और भगवान अपनी शक्तियों, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी शक्ति भगवान की थी जो कार्यरत हुई तो भगवान सो गए। परास्त शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। कहा गया है कि कि भगवान की परास्य शक्ति है, विभिन्न शक्तियां हैं भगवान की, और ये सारी शक्तियां कार्यरत रहती हैं ताकि भगवान आराम करे। तो भगवान ने अपनी सारी शक्तियों को कहा, भगवान की ज्ञान शक्ति, भगवान की कृपा शक्ति, भगवान की क्रिया शक्ति, इन सब को भगवान ने कहा, भाई अब तुम देखो ये पूतना वगैरह आई है, भगवान आराम करने गए, इसलिए आंख बंद कर ली ताकि पूतना भगवान की शक्तियों को न देख पाए। यदि पूतना भगवान की शक्तियों को देख लेती तो पूतना उल्टे पैर फिर भाग जाती, नहीं भाई ये शिशु इसे नहीं मार सकती। परंतु भगवान चाहते थे, अरे भाई इतना दूर तक तुम आई हो तो तुम्हारा तो उद्धार मुझे करना ही है। तो भगवान छिपा रहे थे अपनी शक्तियों को आंखें मूंद कर, भगवान अपनी सुंदरता को छिपा रहे थे। किसी भी व्यक्ति की सुंदरता आंखों में पाई जाती है कि नहीं? कई बार देखा जाता है ना कि फोटो खींचते समय यदि वो आंखें अजीब प्रकार की हो जाए, आधी सोई हुई आंखें जब आ जाती है कैमरा के फ्लैश के वजह से, तो लोग फाड़ दे, बेकार फोटो आई है, फाड़ो दूसरी फोटो खींचो। तो बहुत आंखों के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ हम सुनते थे आंखों की सुंदरता के विषय में कि झील सी नीली आंखें, ये आंखों के विषय में क्या सागर की तरह गहरी आंखें। तो किसी व्यक्ति की सुंदरता उस व्यक्ति की आंखों में होती है। तो भगवान ने ये सोचा कि यदि मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा तो पूतना मेरी सुंदरता को देख लेगी, और यदि पूतना मेरी पूरी सुंदरता को देख लेगी तो पूतना फिर मुझे मारेगी नहीं, और पूतना मुझे मारने आगे नहीं बढ़ेगी तो मैं फिर उद्धार करने का मेरे कारण क्या रहेगा? मुझे पूतना का उद्धार करने के लिए कुछ कारण चाहिए। तो इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि पूतना भगवान की सुंदरता से आकर्षित होकर अपने कारण को न छोड़ दे। अंतिम कारण, भगवान बालक का अभिनय निभा रहे थे। तो भाई एक 6 दिवसीय बालक जब किसी पर पुरुष या पर स्त्री किसी पराय व्यक्ति को देखता है तो आंखें बंद कर लेता है। अरे भाई नहीं, वो केवल अपनी माता को ही देखता है। छोटा सा बालक जब माता उठाती है गोद में तभी वो बालक हंस खेल कर माता की तरफ देखता है, परंतु जब कोई पराया व्यक्ति उठाता है तो बालक अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले आंखें बंद कर ले। तो भगवान अब एक बालक की भूमिका निभा रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि भाई ये पराया व्यक्ति, और ऐसा पराया व्यक्ति आया है जो मुझे मारने वाला है, तो आंखें तो बंद, मेरा अभिनय ठीक से निभाना चाहिए, मुझे जो रोल दिया गया है एक बालक का वो ठीक से निभाना चाहिए। तो भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली। अब देखिए भगवान की यहां पर 3 शक्तियां बताई गई है। एक है भगवान की ज्ञान शक्ति, दूसरा भगवान की क्रिया शक्ति, तीसरा भगवान की कृपा शक्ति। तो भगवान की ज्ञान शक्ति ने भगवान को यह बता दिया, ये पूतना विष लगाकर आई है अपने स्तनों पर आपको मारने के लिए। तो ज्ञान शक्ति ने भगवान को यह ज्ञान दे दिया। अब ये ज्ञान अर्जित करने के पश्चात भगवान की क्रिया शक्ति भगवान को कह रही है, अब मैं कार्यरत रहूंगी इस पूतना को खत्म करने में, परंतु भगवान की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से ऊपर भगवान की कृपा शक्ति होती है। तो भगवान की कृपा शक्ति ने कहा, कोई भी ज्ञान आपको मिला हो पूतना के बारे में और कोई भी ये क्रिया क्रिया शक्ति करे पूतना को मारने हेतु, परंतु मेरा कार्य क्या है? आपने मुझे किस लिए नियुक्त किया है भगवान? कृपा बरसाने के लिए। तो कृपा शक्ति ने भगवान से कहा, चाहे पूतना कैसी भी हो, चाहे ये क्रिया शक्ति कुछ भी करे, मुझे तो कृपा बरसानी है। तो हम देखेंगे कि कैसे ये जो तीन शक्तियों में जब वाद विवाद हुआ तो विजय किसकी हुई? ज्ञान के ऊपर क्रिया की, क्रिया के ऊपर कृपा की। कि भगवान केवल ज्ञान को अर्जित कर कर लेटे नहीं रहे, क्रिया शक्ति ने भगवान की आंखें खोली। और भगवान फिर आगे पूतना के प्रति कार्यरत होते हैं, परंतु क्रिया शक्ति के ऊपर भी विजय प्राप्त की भगवान की कृपा शक्ति ने। तो पूतना, पूतना के विषय में आगे कहा गया है कि पूतना वो तुरंत गई और बिल्कुल समय बर्बाद न करते हुए पूतना ने भगवान को अपने अंक पर बिठाया। अंक कहते हैं गोद को, स्तनपान कराने हेतु। तो सुखदेव गोस्वामी वो आगे के श्लोक में बताते हैं, विभुद्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण अंतम आरोपयत अंकम अंतकम यथारगम सुप्तम बुद्ध रज्जुधि। बहुत ही सुंदर श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी देखिए, अब संस्कृत व्याकरण को कैसे पेश कर रहे हैं परीक्षित महाराज के सामने। शब्दों पर ध्यान दीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो पूतना श्री अनंत, भगवान का एक नाम क्या है? अनंत। तो वो पूतना श्री अनंत को अपने अंक पर रखी न जानते हुए कि ये मेरा अंतकम है। अंकम आरोपयत अनंतम अंतकम। ये देखिए सुखदेव गोस्वामी प्रदर्शित कर रहे हैं संस्कृत भाषा का व्याकरण, कि उन अंत श्री अनंत को पूतना ने अपने अंक पर रखा न जानते हुए कि ये अनंत मेरा अंतकम बनने वाले हैं। और उदाहरण दिया जा रहा है कैसे, जैसे कोई मूर्ख मूढ़ व्यक्ति किसी सर्प को उठा ले रस्सी समझते हुए, यथोरगम सुप्तम अबुद्ध रज्जुधि। रज्जु कहते हैं रस्सी को। तो कोई व्यक्ति सोचे कि अच्छी रस्सी है, चलो खेलते हैं, है सर्प सोया हुआ वो भी। तो कोई व्यक्ति यदि सोए हुए सर्प को उठाकर अपने गोद पर रखे ये सोचते हुए कि रस्सी है, वैसे ही पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को श्री अनंतम अंकम आरोपयद अंतकम, उस प्रकार से भगवान को अपनी गोद में रखा। तो पूतना अब जैसे ही भगवान को अपने अंक पर रखी है तुरंत स्तनपान कराना शुरू किया, परंतु पूतना सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने स्तनों पर वो कैसा विष लगाकर आई थी, कैसा विष लगाकर आई थी। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यम उल्बणम घोरांकमादाय शिशुर ददावथ। घोरांक उसका, उसका जो अंक, उसकी जो गोद थी वो घोर रूप थी, माता की अंक के समान नहीं थी। घोरांक स्तनम दुर्जर वीर्य उल्बणम, और ऐसा दुर्जर वीर्य लगाकर वो आई थी अपने स्तनों के ऊपर विष, ऐसा विष लगाकर आई थी उल्बणम, यदि वो किसी के होंठों, केवल होंठों के अग्र भाग पर भी यदि वो विष कोई स्पर्श कर लेता तो वहीं खत्म हो जाता, इतना दुर्जर वो विष था। होंठों के अग्र भाग पर स्पर्श करने मात्र से, तो ऐसा विष वो देखिए भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए लगा कर आई थी। कई बार हम देखते हैं कलयुग में बहुत से लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं विष खाकर। मुझे याद है कि हम जहां पर पले बड़े वहां पर एक परिवार में एक लड़की वो फेल हो गई थी 10th स्टैंडर्ड में, तो इतना अब 10वीं में फेल हो जाना मानो कि आसमान टूट गया ऊपर, क्या हो गया, लोग पूछेंगे, सभी लोग बात बनाएंगे, फेल हो गई। तो उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, आत्महत्या। तो मिला उसे वो बेगोन स्प्रे, वो कॉकरोच को मारने के लिए होता है, घर में वो मिला। उसने कि कॉकरोच मरते हैं, मैं भी मर जाऊं, कॉकरोच अच्छे हैं मुझसे, 10th में तो जाना नहीं पड़ता हूं। तो बेगोन स्प्रे खाने के लिए वो खाई, पी लिया पूरा, वो आधा लीटर का पूरा अंदर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो जाने की, हाँ अब पता लगा कि वो कॉकरोच भी घर में क्यों नहीं मरते थे, क्योंकि कलयुग में विष में भी मिलावट होती। उसमें भी मिलावट, परंतु यहां पर पूतना कोई बेगोन स्प्रे लगाकर नहीं आई थी, कलयुगी बेगोन स्प्रे या मिलावटी विष लगाकर नहीं आई। दुर्जर वीर्य स्तनम उल्बणम, ऐसा दुर्जर वीर्य लगाकर आई थी कि केवल स्पर्श करने मात्र से, अंदर भी लेने की आवश्यकता नहीं है, उस विष का स्पर्श करने मात्र से कोई मर जाए। और सोचिए 6 दिवसीय बालक, उसके लिए ऐसा दुर्जर वीर्य। तो मानो ऐसा हुआ कि कोई मच्छर को मारने के लिए कोई तोप खड़ा किया है, हालांकि भगवान तो खुद तोप है, परंतु पूतना नहीं जानती थी। तो अब तुरंत उसने स्तनपान शुरू कर दिया। अब भगवान स्तनपान ले रहे हैं, दूध पीने लगे, तो सभी नंद यशोदा माई, रोहिणी और अन्य गोपियां देख रही, देखो कितना मातृभाव है इस महिला में, कि किसी दूसरे के पुत्र को अपना स्तनपान करा रही, कितना प्रेम है इसके अंदर, वो गुणगान कर रहे हैं। और भगवान यशोदा माई और रोहिणी की तरफ देखते हैं, हाँ देखना कितना प्रेम है, समझ में आएगा। तो जैसे ही भगवान स्तनपान शुरू किए, पूतना समझने लगी कि भाई ऐसा दुर्जर वीर्य जो होंठों पर स्पर्श करने मात्र से कोई व्यक्ति मर जाए, यहां पर इतना समय हो गया ये मर क्यों नहीं रहा, और ये दूध पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। तो भगवान पहले तो पूरा दूध पी लिए, उसके पश्चात पूरा विष पी लिए भगवान, और विष पूरा पीने के पश्चात भगवान, क्योंकि भगवान दूध इसलिए पिए कि भगवान को कोई कारण चाहिए था, कोई पूछे यदि जाकर भगवान से कि भाई गोलोक वृंदावन में ये पूतना को एंट्री क्यों दी आपने, ये तो भाई मारने आई विष लगाकर, तो भगवान नहीं नहीं दूध भी दिया इसने मुझे। तो भगवान कारण पैदा कर रहे थे कि इसने कुछ तो अर्पित किया, अपना दूध अर्पित किया, इसलिए भगवान ने जबरदस्ती दूध पिया और फिर विष, और उसके पश्चात प्राण पीने लगे भगवान इस पुतना के। और जब प्राण पीने लगे, समुंच मुंचालम इति प्रभाषिनी, पुत्रा चिल्लाने लगी, मुंचे छोड़ो छोड़ो, अरे भाई ये तो कोई ऐसा ऐसा बालक नहीं है, तो मेरा प्राण हर रहा है। सब मुंच मुंचालम इति प्रभाषिणी, चिल्लाने लगी वो मुंचे छोड़ो। तो मानो भगवान अब पूतना से कहते हैं, मैं एक बार जिसे पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं। तो ध्यान रखना चाहिए, भगवान यदि हमें पकड़ लें तब भगवान कभी छोड़ने नहीं वाले हमें। तो भगवान ने कहा कि भाई अब तो तुम्हारा उद्धार कर कर ही छोड़ूंगा मैं। तो अब प्रश्विन्न गाता क्षिपति रुरो दुहा, रोने लगी, चिल्लाने लगी, चिंघाड़ने लगी। और क्योंकि भगवान ने अब उसका सारा मैल विष पी लिया, तो अब पुतना शुद्ध हो गई। भगवान ने उसके हृदय का सारा कपट पी लिया। तो जब सारा कपट पी लिया भगवान ने, तो अब वो अपने आप को छिपा नहीं पाई। तो उसका जो निज रूप था वो निज रूप में आ गई पुतना। और उसका निज रूप कैसा था? विकराल उसका शरीर, घोर उसका रूप। इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि पुतना, सबसे पहले तो पुतना चिल्लाई और पुतना चिल्लाकर बाहर भागने लगी नंद भवन के। अपने विकराल स्वरूप को लेने से पहले पुतना नंद भवन से बाहर भागी। वो क्यों बाहर भागी? क्योंकि पूतना के हृदय में जो भगवान स्थित थे परमात्मा स्वरूप में, तो परमात्मा स्वरूप ने पूतना को प्रेरित किया, अरे भाई तुम यहीं पर विकराल रूप ले लोगी तो सारा नंद भवन यहां पर गिर जाएगा। कितना बड़ा शरीर था, मीलों लंबा था पूतना का विकराल शरीर, 8 मील लंबा। तो नंद भवन सारा टूट जाएगा यहां पर, बाकी सारी लीला कैसे होगी? आगे बहुत सी लीला और करनी है, तो भागवत कथा कैसे करेंगे? तो भगवान ने प्रेरित किया पूतना को, बाहर ले जाओ मुझे, पहले थोड़ा मैदान में चलो, वहां जाकर जो कुछ करना है हम दोनों करेंगे कुश्ती। तो पूतना चिल्लाते हुए वो बाहर गई। और ये बताया गया है कि भगवान पूतना को खुले मैदान, वहां पर नंद भवन के बगल में खुले मैदान की तरफ पूतना को ले जाने के लिए प्रेरित किया भगवान ने। और वहां पर भगवान ने जब उसे नीचे गिराया, प्राण हर लिए उसके, तो किस दिशा में गिराया पूतना को? जिस दिशा में कंस का उद्यान था, ब्रजमंडल की दिशा में नहीं, मथुरा मंडल की दिशा में जहां पर कंस का उद्यान था वहां पर गिराया, ताकि यदि कोई डैमेज भी हो, यदि कुछ यहां वहां टूटे फूटे भी, तो कंस का ही उद्यान टूटे फूटे। तो भगवान देखिए क्या प्लानिंग कर कर पूतना का उद्धार। ऐसा नहीं कि भगवान को जान नहीं रहे कि कहां से क्या करना है। तो पूतना चिल्लाते हुए, और पूतना अब विकराल उसका स्वरूप ले ली, और अब सभी यशोदामाई नंद, यशोदामाई और रोहिणी देवी वो देखने लगी कि भाई ये लक्ष्मी देवी अचानक दुर्गा देवी कैसे बन गई। और पूतना के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना वो ऐसा प्रतीत हो रही थी, उसके जो दांत, इतने बड़े बड़े दांत थे अंदर कि उसके दांत मानो कोई बड़ा हल हो, खेत में जोतते हैं हल से, तो कोई बड़ा हल हो उस प्रकार से उसके दांत थे। और उसकी जो दो नासिका इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी उसकी दो नासिका थी मानो कि गुफा कंदरा, गिरी कंदरा, किसी पर्वत की कंदरा गुफा हो, इतनी बड़ी बड़ी उसकी दो नासिका थी। और पूतना ऐसे गिरी मानो कोई बहुत बड़ा पर्वत नीचे गिरा हो, इतनी बड़ी पूतना। और उसके जो केश थे, केश बंद सारे, अब वो सारे केश खुल गए, तो सारे केश खुल गए और असली जो पूतना के केशों का जो रंग था वो आ गया, ताम्र वर्ण। ताम्र होता ना, ये क्या कहते हैं, तांबा, जो तांबा का रंग कैसा होता है वैसा पूतना के केशों का रंग। तो यही मैं देख रहा था कि वहां अमेरिका में जो स्त्रियां अपने केशों को ताम्र वर्ण कर रही हैं, तो श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि पूतना, ये सब पूतना के अनुयायी हैं, अपने केशों को ताम्र वर्ण कर रहे हैं। पूतना के केश ताम्र वर्ण के थे, तो उसके केश ताम्र वर्ण के, उसकी जो दो आंखें थी वो दो आंखें अंदर धस चुकी थी, भगवान ने सब कुछ सोख लिया, चूस लिया, तो दोनों आंखें अंदर चली गई पूतना की, और वो दोनों आंखें इतनी बड़ी और इतनी अंदर चली गई कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुआं, अंधा कुआं, दो अंधे कुएं जिसमें पानी नहीं, ऐसी पूतना की दो आंखें। और पूतना के जो पेट था वो अंदर चला गया, और इतना अंदर चला गया पूतना का पेट अब कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि कोई बहुत बड़ा सरोवर पानी से खाली हो गया, पानी विहीन कोई सरोवर ऐसा पूतना का पेट हुआ। और पूतना गिरते समय इतनी जोर से चिल्लाई और ऐसी आवाज की पूतना ने मानो हजारों की संख्या में वज्रपात हुआ, बिजली कड़कने लगी। अब हजारों की संख्या में यदि वज्रपात बिजली कड़कने लगे तो कानों के पर्दे फट जाए, तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों के कानों के पर्दों को बचाया। आगे लीला करनी है कि नहीं? तो पूतना अब इस स्थिति में गिरी हुई, और सभी विशेष रूप से यशोदा और रोहिणी, विशेष रूप से यशोदा और रोहिणी वो तुरंत चिंता में कि हमने क्यों ऐसी गलती की, हमने क्यों ऐसी गलती की कि इस पूतना, इस राक्षसी को हमने प्रवेश दिया, और अब देखो हमारे लाला के साथ ये कर क्या कर रहा है। परंतु यशोदा और रोहिणी ने देखा क्या, यशोदा और रोहिणी ने देखा कि भगवान, हालांकि पूतना मूर्छित गिरी हुई, मूर्छित पूरी गिरी हुई पूतना, परंतु भगवान बालम च तस्य उरसी क्रीडंतम अकुटो भयम, कि भगवान क्रीडंतम क्रीड़ा कर रहे हैं इस पूतना के शरीर के ऊपर, अकुटो भयम बिना किसी भय के भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं पूतना के शरीर के ऊपर। क्योंकि भगवान जैसे छोटे बालक वो देखते हैं ना, कोई अच्छा मैदान मिले खेलने के लिए, तो भगवान ने देखा भाई इतना बड़ा 8 मील लंबा मैदान मिला है, चलो क्रीड़ंतम, भगवान खेलने लगे पूतना के शरीर के ऊपर, अकुटो भय। परंतु यशोदा और रोहिणी वो भयभीत इसलिए नहीं हुई पूतना के इतने बड़े शरीर को देखकर, वो केवल एक टक भगवान की तरफ देख रही थी कि हमारा बेटा, हमारा मेरा लाला कैसा है। तो अकुटो भयम भगवान के विषय में भी कहा गया है, और अकुटो भयम यशोदा और रोहिणी के विषय में भी कहा गया है कि वो भी निर्भय होकर तुरंत वो भगवान को बचाने के लिए पूतना के शरीर के ऊपर चढ़ गई। वो ये नहीं सोच रही थी अरे भाई दूर रहो थोड़ा, पता नहीं ये हाथ एक ऐसा फेंक देगी हमारे ऊपर तो हम मर जाएंगे। तुरंत वो अपनी चिंता न करते हुए ऊपर चढ़ी भगवान को नीचे उतारने के लिए, बचाने के लिए। और जैसे ही माता यशोदा ने भगवान को नीचे उतारा पुतना के विकराल शरीर से, तो सबसे पहले देखिए अब वृंदावन का प्रथमोच्चार, फर्स्ट एड, प्रथम उपचार जिसे कहते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देखिए क्या किया। यशोदा रोहिणी भ्याम समम बालस्य सर्वतः रक्षाम विद धीरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादिभि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजरासभकम् रक्षाम चक्रुश्च सक्रर्थ द्वादसंगेषु नामभि। तुरंत गवों को बुलाया गया, तुरंत सभी गवों को बुलाया गया और गायों को बुलाकर गोपुच्छ भ्रमणादिभि कि भगवान के शरीर के चारों तरफ गोपुच्छ जो गाय की पूंछ होती है उसे घुमाया गया, आरती उसकी की गई भगवान के चारों तरफ। फिर गोमूत्रेण, गोमूत्र से भगवान के शरीर को उसका लेप किया गया, गोमूत्र से, गोबर से, और गोरज जो गाय के खुरों से जो रज उड़ती है जब वो चलते हैं, तो उस रज से भगवान की रक्षा हेतु प्रथम उपचार किया गया। तो यहां पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया गया है कि भगवान 6 दिन के और भगवान की रक्षा हेतु सारे गौएं आ गई। एक गौ ने अपना गोपुच्छ दिया, एक गौ ने अपना गोमूत्र दिया, एक गौ ने गोबर दिया, एक गौ ने गोरज दिया। तो ये सारे गाय आकर भगवान की रक्षा हेतु सब कुछ देने लगी, तो भगवान अब इतना कृपालु हो गए इन गौओं के प्रति कि भगवान ने उस दिन या आज के दिन पूतना का उद्धार जो हो रहा है, तो भगवान ने पूतना के उद्धार के दिन ये प्रण लिया कि क्योंकि इन गौओं ने मेरी रक्षा की, मैं जब 6 दिन का हूं तो आज से मैं प्रण लेता हूं कि इनका रक्षक मैं बनूंगा। और उस दिन भगवान को नाम मिला, कौन सा नाम? गोपाल और गोविंद। तो यशोदा माई एक सुंदर गीत गाती है, ब्रज भाषा में इस लीला में ये गीत गाया जाता है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बोलो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। सब बोलिए, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, बोलो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोपाल, बोलो बाके नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मानो यशोदा गा रही है, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, मेरो नंदलाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, मेरो नंदलाल तरस रहे नैना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तो बोलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो भगवान ने प्रण लिया कि आज के दिन इन सारे गांवों ने मेरी रक्षा की, तो आज से मेरा नाम होगा गोविंद और गोपाल। तो मानो गांवों ने भगवान को दीक्षा दी, भगवान के इन अनन्य भक्तों ने भगवान को एक नाम दिया। दीक्षा में होता क्या है, दीक्षित शिष्य को नया नाम मिलता है। तो भगवान को ये दो नए नाम मिले, जो गांवों के पालक है और जो गांवों को आनंद देते हैं, गोविंद और गोपाल। और पूतना अब वहां पर पूर्ण शुद्ध। अरे भाई, पूतना क्यों नहीं शुद्ध होगी, हम देखेंगे कि सबसे पहले पूतना के कौन कौन से दुर्गुण थे कि भगवान ने इतनी कृपा पूतना को दी कि अपने होठों का स्पर्श पूतना के शरीर से करवाया। न केवल वो, बल्कि भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श पूतना के शरीर पर किया, क्रीडंतम खेलते हुए। तो सुखदेव गोस्वामी अब मानो वो भाव विभोर होकर पूतना के दुर्गुणों को पहले बता रहे हैं कि परीक्षित पहले पूतना के दुर्गुणों पर ध्यान दो और फिर भगवान की जो कृपा शक्ति पूतना के ऊपर हुई फिर उस पर ध्यान दो। तो कहते हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशन जिघांशयापि हरये स्तनं दत्वा पसद्गतिम। यहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि पूतना, सबसे पहले पूतना का दुर्गुण क्या था, वो एक राक्षसी कुल में पैदा हुई थी। तो सबसे पहला दुर्गुण पैदाइशी राक्षसी, राक्षसी और उसके पश्चात मानो कोई पैदाइशी नीचे कुल में हुआ हो, उसकी उसका जन्म नीचे कुल में हुआ हो, परंतु यदि अपने कर्मों से वो अपने आप को ऊंचा बना ले तो व्यक्ति नीचा नहीं कहा जाएगा। तो पूतना पैदाइशी राक्षसी, परंतु उसने अपने कर्म भी सुधारे नहीं। पूतना के कर्म कैसे थे, बालग्नि, एक तो पैदाइशी राक्षसी और उसके ऊपर कर्म भी ऐसे कि बालकों को मारने वाली। वो यहां पर एक बात पर ध्यान देना होगा कि पूतना ने हर समय किसी दूसरे बालकों की हत्या की और पूतना ने कभी भी किसी भी बालक की गर्भ में हत्या नहीं की। तो आजकल कलयुग में बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है कि एक स्त्री का हृदय बहुत मृदु और कोमल होना चाहिए। कि आजकल स्त्रियां जा रही हैं अपने ही शिशु को अपने ही गर्भ में मारने के लिए, गर्भ हत्या। अरे यदि ये सब पाश्चात्य देश में हो रहा होता तो ठीक था, भारत, भारत की इस पुण्य भूमि में सब जगह पर ये लगाया जा रहा है गर्भपात, इस जगह पर उस जगह पर इतने पैसों में इतने कम समय में, और इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां पर पूतना जैसी राक्षसी भी उसने गर्भपात नहीं किया था, गर्भ हत्या नहीं की थी, हालांकि वो बालग्नि थी, तो इससे क्या समझ में आता है कि जो अपने ही शिशु की हत्या अपने ही गर्भ में पैसे देकर जानबूझकर जानते हुए करा रही है, पूतना से भी गिरी हुई है। ये थोड़े कठोर शब्द होंगे परंतु ये हमें पूतना से सीखना है। तो एक तो राक्षसी ये दुर्गुण उसका, बालग्नि ये दूसरा दुर्गुण, कर्मों से उसने दिखा दिया। वो बालकों को केवल मारती नहीं थी, रुधिर आशन, बालकों का जो रक्त था वो पीती थी वो पूतना। मारने के पश्चात छोड़ती नहीं थी। अब मानो कोई व्यक्ति किसी को मारे, गलत काम करे, परंतु यदि भगवान का प्रसाद खा ले तो अपने आप को शुद्ध कर ले, परंतु ये भगवान का प्रसाद भी नहीं खाती थी। उन बालकों को मारने के पश्चात रुधिर आशन उनके रक्तों को पीती थी। अब इतना ही नहीं, सबसे बड़ा दुर्गुण इसका क्या था, जिघाम शयापि हरये, कौन से बालक को मारने आई, वो बालक जो सबके आकर्षण के केंद्र, जो मनोहरी मनोहर वो बालक भगवान श्री कृष्ण, उन्हें मारने के लिए वो आई। अरे और कोई बालकों को मारती तो ठीक था, यहां पर भगवान को मारने आई, इतने सुंदर भगवान इनको मारने आई, ये इसका चौथा दुर्गुण। और अंतिम दुर्गुण सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मारने भी कैसे आई, कपट से, स्तनम दत्वाप, अपने स्तनपान कराने के कपट से विष पिलाने हेतु मारने आई। तो यहां पर पहले दुर्गुणों के बारे में बता रहे हैं, परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्तनम दत्वाप सदगतिम, फिर भी भगवान ने सदगति दी इस पूतना को। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किम्नु रक्तस्तन मातरो यथा। तब फिर है परीक्षित, उन माताओं का क्या कहना जो प्रेम भाव से, जैसे कि माता यशोदा और रोहिणी, जो कि प्रेम भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से वो अपना स्तनपान भगवान को कराती हैं, तो उनका क्या कहना जब यहां पर पूतना स्तनपान कराने आई विष को लगाकर। किं पुनः श्रद्धया भक्त्या, तो पूतना की सदगति, इसके चार कारण बताए गए कि पूतना की सदगति के कौन से चार कारण थे जिसके वजह से जब पूतना का शरीर जलाया गया तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना के शरीर, जले हुए शरीर से अगुरु की सुगंध आ रही थी। यदि इस सृष्टि में कोई सबसे अधिक सुगंधित वस्तु है तो वो है अगुरु। और पूतना के शरीर को जब जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया, तो अगुरु की सुगंध फैल रही थी पूरे ब्रजमंडल में। तो पूतना को ये सदगति, धातृचितम ततोन्यम, ये सब कुछ कैसे, कौन से कारणों के वजह से, तो यहां पर सबसे पहले पूतना की मृत्यु कहां हुई, जो तीर्थ स्थानों में सबके तीर्थ स्थान है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि में जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो केवल शरीर छोड़ने मात्र से ही सदगति उसकी हो जाती है निश्चित। तो फिर पूतना, उसने अपना शरीर ऐसे दिव्य धाम में छोड़ा ब्रजमंडल में, ब्रजभूमि में, यह सबसे पहला कारण था उसकी सदगति का। अंतिम संस्कार पूतना का किसने किया, कोई पंडों को पैसा देकर नहीं बुलाया था। और हम सब यहां पर जानते हैं कि पंडों को पैसा देकर जो काम किया जाता है वो कौन सी श्रेणी का होता है। यहां पर भगवान के शुद्ध भक्त ब्रजवासी, वो पुतना का अंतिम संस्कार उन्होंने किया। तो सोचिए, जब ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के अंतिम संस्कार कर रहे हैं पुतना का, तो क्यों नहीं पुतना की सदगति होगी। ये दूसरा कारण था पुतना की सदगति का। और तीसरा कारण, पुतना को शुद्ध किया भगवान के अधरों ने, भगवान के होठों ने पुतना को शुद्ध किया। भगवान के होठों ने सबसे पहले पुतना के विष को पिया, पुतना के दूध को पिया, और पुतना के सारे कपट को पिया, और पुतना के सारे प्राण को हर लिया। तो भगवान के होंठ पुतना के स्तनों को स्पर्श किए। वही होंठ जब भगवान बांसुरी बजाते थे, बांसुरी को जब वो होंठ स्पर्श करते थे, और वो बांसुरी की धुन जब गोपियों के कर्णों में पहुंचती थी, तो गोपियां सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाती। भगवान की जो मुरली की धुन निकलती थी, तो बताया गया है कि वृंदावन में जो पत्थर हैं वो जमुना की तरफ बहने लगते, भगवान की ध्वनि की तरफ पिघलकर। जो जड़ वस्तु है वो चेतन होकर बहने लगती, और यमुना जो बहती रहती वो रुक जाती पत्थर के समान, भगवान की मुरली की ध्वनि सुनने के लिए। और वो मुरली की ध्वनि निकलती कहां से थी? भगवान के होठों से। तो वही भगवान के होंठ जो ये सब कुछ कर देते वृंदावन में, इस पूतना के शरीर को स्पर्श कर रहे थे। और इतना ही नहीं, अंतिम कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श हो रहा था भगवान पूतना के शरीर को। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो उसकी अस्थियां गंगा में बहाई जाती है, है कि नहीं? मृत व्यक्ति की अस्थियां गंगा में क्यों बहाई जाती है? ताकि गंगा के स्पर्श से उस व्यक्ति की सदगति हो जाए। तो गंगा में शक्ति कहां से आई है? गंगा का एक और नाम है विष्णुपादी। जो भगवान श्री विष्णु के चरणों से निकली है वो है गंगा। तो गंगा में ये सारी शक्तियां आई हैं किसी को सदगति देने की, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर आई हैं। तो सोचिए, वो साक्षात चरण पूतना के शरीर के ऊपर हैं, जो कि गंगा के स्रोत हैं, वो चरण पूतना के शरीर के ऊपर से। तो यदि गंगा किसी मृत व्यक्ति की अस्थियों का सदगति कर सकती है, तो वो गंगा जिसके चरणों से निकली है, उनके चरण पूतना के शरीर के ऊपर, तो पूतना की सदगति क्यों नहीं होगी? कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, क्यों नहीं ऐसे श्री वृंदावन चंद्र की मैं शरण ग्रहण करूं, जो कि इतने कृपालु हैं पूतना के ऊपर। इसलिए पूतना का शरीर अगुरु की तरह सुगंधित हुआ। और इसलिए जब ब्रह्मा जी ने पूतना उद्धार देखा, तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को जाकर कहा, आप कृपया आप अपनी कृपा शक्ति को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि पूतना अकेली नहीं थी जिसने भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया। पूतना के एक भाई, दो भाई पूतना के, बकासुर और अघासुर, ये पूतना के दो भाई आगे वो भी आए भगवान को मारने। तो फैमिली बिजनेस था इसका, भाई बहन मिलकर भगवान को मारने का प्रयास कर रहे थे, और भगवान ने पूरे फैमिली का उद्धार किया। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यदि पूतना जैसे परिवार को आप इनका उद्धार कर रहे हो, तो भाई ये सारे जो ब्रजवासी हैं इनके लिए क्या बचा रहेगा आपकी कृपा शक्ति के पास, जो इतनी भक्ति और प्रेम से वो आपकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए अहोबकीयम् स्तनकालकूटम् जिघांशया पायदप्यसाधवि लेभे गतिम् धातृचितम् ततोऽन्यम् कम् वा दयालुम् शरणम् व्रजेम। भगवान ने पूतना को अपनी माता का पद दिया गोलोक वृंदावन में, क्योंकि भगवान ने केवल पूतना में यही देखा कि वो दूध पिलाने आई, भगवान ने ये नहीं देखा कि उसमें विष घोल कर लाई थी, भगवान ने उसका कपट नहीं देखा, भगवान ने केवल उस गुण को देखा। इसलिए कहा गया है कि जब भगवान अपनी लीला समाप्त कर जब जा रहे थे, तो भगवान जब अंतिम समय जब जा रहे थे तो अंतिम क्षण भगवान ने अपनी माता को पुकारा, हे माते जाते समय। और जब भगवान ने अपनी माता को पुकारा तो तीन माताएं आकर खड़ी हुई, माता देवकी, माता यशोदा और पूतना। ये पूतना की गति हुई। तो फिर सुखदेव गोस्वामी इसलिए कहते हैं इस पूतना उद्धार की लीला के अंत में, य एतद् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम श्रृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। कि यदि हमने इस पूतना उद्धार की लीला श्रवण की है श्रद्धा से, तो सुखदेव गोस्वामी आश्वासन हमें दे रहे हैं गोविंदे लभते रतिम, कि उन श्री गोविंद के चरणों में हमारी भक्ति जागृत होगी, रति जागृत होगी। तो ये फलस्तुति है पूतना उद्धार की लीला श्रवण करने का। केवल तो हम आप सबको बधाई देना चाहेंगे कि आप लोग इतने समय तक जागरूक अवस्था में, और आशा करते हैं श्रद्धा से आपने श्रवण किया। तो सुखदेव गोस्वामी के अनुसार भगवान श्री गोविंद श्री गोपाल के प्रति भक्ति जागृत हो गई होगी। कल का विषय हमारा रहेगा भगवान श्री कृष्ण द्वारा तृणावर्त एवं शकटासुर उद्धार। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको देना चाहूंगा, क्षमा करना थोड़ी कथा में देरी हो गई होगी, परंतु हम चाहते थे कि हम सब पूतना की इस उद्धार की कथा से लाभ लें। तो आप कुछ समय के लिए बैठिए, अभी कीर्तन होगा आरती होगी, तो आप कीर्तन में भाग लीजिए और तत्पश्चात फिर आगे की सूचना।